नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नमक मिर्च। मैं हूं दीपाली रेखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम देवभूमि उत्तरकाशी। एंड दिस इज अ स्पेस वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट मेनी ऑफ अस एक्सपीरियंस बट रियली हैव अ चांस टू ओपनली डिस्कस, लाइक लाइफ आफ्टर मैरिज, रिलेशनशिप विद इन लॉस एंड एवरीथिंग दैट कम्स विद बिल्डिंग अ जर्नी ऑफ न्यू लाइफ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अक्षत गुप्ता, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू से ही इज़ एन अमेजिंग हाउस हस्बैंड, एक बहुत ही अच्छे सुपुत्र और बहुत ही अच्छे स्क्रीन राइटर, ऑथर और क्या क्या बोलें, मतलब पूरा ही नहीं हो पड़ेगा। तो अक्षत जी, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले अक्षत जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना बिजी स्केड्यूल से समय निकाला। आपका लॉन्च था, बुक लॉन्च द नाग वॉरियर्स 2 का, और आप यहाँ पर आए हमारे और हमारे ऑडियंस के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। अक्षय जी, आपने कहावत तो सुनी होगी, शादी का लड्डू
जी,
जो खाए वो भी पछताए, जो ना ना खाए वो भी पछताए
जी।
तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
मैं ये दोनों दोनों तरफ रह चुका हूँ। एक बार खा के पछता चुका हूँ और अब खा के खुश हूँ, क्योंकि मेरी शादी दो बार हुई है।
अच्छा,
मेरा एक डिवोर्स हो चुका है, ये मेरी सेकंड मैरिज। ये बड़ा आसान है एक लाइन में बोल के ख़त्म कर देना कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मगर डिवोर्स जैसी चीज़ें आपको जीवन के बारे में, साथी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या नहीं होना चाहिए था या क्या क्या रोका जा सकता था, उसके बारे में कहाँ सामने वाले की गलती हुई, कहाँ खुद की गलती हुई, और अगर अगली बार मौका मिले तो उस रिश्ते को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में, ऐसे अनगिनत बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो पहले जब मेरी शादी हुई थी, मैं और मेरी एक्स वाइफ, मजबूरी एक्स वाइफ बोलना, वही शब्द सबको समझ में आता है। एक्स समकक्ष बोलूँगा तो अजीब लगेगा।
एग्जैक्टली।
तो हम दोनों बहुत यंग थे, लव मैरिज थी और 21-21.5 साल में हमारी शादी हो गई थी। तो बाद में समझ में आया कि वो उम्र शादी करने की नहीं होती है असल में, वो उम्र करियर बनाने की, फ्यूचर सेट करने की, बड़े बड़े सपने देखने की, देश और दुनिया घूमने की, खूब मेहनत करने की, दोस्तों के साथ गोवा जाने की, इन चीज़ों की उम्र होती है ना, कि शादी करके बच्चे संभालने की। पर किसी ने समझाया नहीं।
एग्जैक्टली।
सबको लगा हाँ हाँ करना चाहिए, तो कर लिए। और जब तक समझ आया कि ये शायद वी आर नॉट कंपैटिबल, वो आमतौर पर वो समझ आती है 28-30 साल के आसपास, आज की जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है कि तब उनको ज़्यादा क्लैरिटी रहती है कि भाई ठीक है, प्यार है, प्यार एक चीज़ है,
प्रैक्टिकलिटी बहुत हो,
प्यार एक चीज़ है, पर जिससे आपको प्यार है उसके साथ जीवन बिताना एक दूसरी चीज़, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। बहुत रेयर है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो और आप उसके लिए अच्छे जीवन साथी भी हो।
एग्जैक्टली।
है ना, कभी कभी मिलना, छुट्टियों में 4 दिन होटल में एक साथ स्टे करना एक अलग बात है, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत किसी के साथ एक कमरे में, एक घर में रहना बहुत अलग बात है,
बहुत मुश्किल
जी।
तो आपके लिए शादी का क्या मतलब है? जैसे इज इट अ ड्यूटी या एक रिश्ता या एक स्पिरिचुअल जर्नी?
मेरे ख्याल से तीनों ही नहीं। जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी जी का कोई इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली और मैं और मेरी समकक्ष बैठे हुए थे, हम सिर्फ मुस्कुराने लग गए। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों खूब ट्रैवल करते हैं, फिल्मों के शूट में, टॉक शोज में, इधर उधर, दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त कम मिलता है। तो वो बोले कि हाँ, हम लोग में होती है तलखियाँ, लेकिन जब मिलते हैं तो लड़ने का वक्त ही नहीं होता, क्योंकि इतना कम वक्त होता है कि उसको लड़के वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हर कपल में दोनों को, हस्बैंड को और वाइफ को, किसी ना किसी चीज़ में इंडल्ज रहना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ में बिजी होना चाहिए। ये गलती मुझसे भी हुई पहली शादी में, या कहें कि उनसे भी हुई पहली शादी। क्या होता है जब दो लोगों के पास अपना अपना काम होता है तो उनका सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ सामने वाला व्यक्ति नहीं होता।
एग्जैक्टली।
जो काम पे जाता है उसके सेंटर ऑफ वर्ल्ड बहुत सारे अलग अलग समय में एक ही दिन में डिवाइडेड होते हैं। वो ऑफिस जाता है तो उसका सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बॉस हो जाता है,
राइट।
वो घर आता है तो उसका सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइफ हो जाती है,
करेक्ट।
लेकिन वो जो महिला है जो घर में बैठी है हाउसवाइफ बनके, वो उनका सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ एक ही है,
उसका पति।
उसको सुबह उठाओ, उसका रुमाल प्रेस करो, उसको कपड़े दो, उसको अच्छा नाश्ता कराओ, उसका टिफिन बांध दो, उसको भेज दो, उसके बाद वो पूरा घर ठीक कर रही है, वो भी उसी के लिए कर रही है।
एग्जैक्टली।
फिर वो व्यक्ति वापस आया तो उसके पसंद का बनाओ यार, थक गया हूँ, चाहे दो से जो पुरुषों का आमतौर पर चालू होता है,
एग्जैक्टली,
से लेके और वो रात तक ये बना दो, तो खाना बनाएंगी वो, खाना लगाएंगी वो, खाना उठाएंगी वो, किचन सेट वो करेंगी। उस समय अमूमन देखा जाता है कि मैं बहुत थक गया हूँ यार, तो मैं अभी थोड़ी देर न्यूज़ देखूँगा, मैच देखूँगा, है वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बस हमको उस समय प्रॉब्लम समझ नहीं आती है। एक कोई भी व्यक्ति भाई, हम पुरुष बार बार अपना काम बदलते हैं ना, बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे कि पूरे जीवन एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। इस साहब में तो 60 साल से ही ऐसा नहीं होता, 10 साल किए, फिर कुछ हो गया, फिर आप बदल लिए। उस महिला के बारे में सोचिए जिसको पूरे जीवन बस वही करना है,
वही करना है, एक सर्कल चलता रहता है और आपको और एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यही करेगी सब कुछ।
तो वो जो सर्कल चल रहा है, उस सर्कल के बीच में हमको बिठा दिया जाता है, पुरुषों को,
और वो खो देती है अपने आप को,
वो अपने आप को खो देती है। अब जब सुबह से रात तक वो एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही परिवार के लिए, एक ही चार दीवारी के अंदर काम कर रही है, तो उसकी उम्मीदें बाकी सबसे बढ़ती चली जाती कि मैं पूरे दिन हूँ तो तुम क्यों नहीं हो, मैं ये सब कुछ मैं करती हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलता कुछ, जो भी, चाहे मान सम्मान, चाहे प्यार, चाहे वक्त, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। आप किसी एक दिन बहुत प्यार उड़ेल देंगे और अगले दिन धुतकार देंगे तो नहीं चलेगा। हमको चार टाइम रोज खाना चाहिए, तो शरीर को ऐसे ही मान सम्मान भी, प्यार भी, समय भी, ये सब बराबर प्रपोर्शन में रोज चाहिए। जब वो नहीं मिलता है तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे कुछ गलतियाँ करके और दूसरों की गलतियाँ देख के समझ में आई, आप सोचिए कि क्यों ऐसा हो जाता है कि एक कपल में हमेशा हस्बैंड आप हो जाता है और वाइफ तुम या तू हो जाती है। अनगिनत घरों में आप देखेंगे।
सही कह रहे हैं,
तो बराबरी की चीज़ रही नहीं ना। जो इसीलिए मैं अपने फादर को बचपन से देखा हूँ, वो मेरी माँ से लेके, हम दोनों भाइयों से लेके, हमारी पत्तियों से लेके और हमारे बच्चों तक, सबको आप करके बात करते, बेटा आप, बेटा आप, बेटा आप। उनकी समकक्ष का नाम उर्मिला है, मेरी माँ उर्मिला जी आप। ये सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है ना, आप ही तो बोल रहे हैं, जी ही तो लगा रहे हैं। जब बहस होती है ना तो मर्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमेशा आप बोलने से जहन में आप शब्द रहता है।
छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग है।
जब आप तू या तुम पे आते हैं तो, और जब झगड़ा होता है तो फिर वो तू और तुम से नीचे ही, उसका स्तर और नीचे गिर
जाता है। करेक्ट,
गुस्से में। लेकिन अगर आप है तो गुस्से में आपसे तुम हो जाएगा, है ना। जब जो तुम और तू से शुरू होगा, सोचिए कहाँ जाएगा। लेकिन महिला अपने हस्बैंड को आप ही बोल रही, तो इसीलिए जब जब बहस होती है या कोई तकरार होती है तो महिलाओं को ज़्यादा चुपता है और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो शुरू से आप बोल रहे हैं तो वो अपने मर्यादा में बहस कर रही है, नॉट ऑल बट ज़्यादातर। और पुरुष, मैं बाहर ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो सारी चीज़ें उड़ते उड़ते तुम तू और नीचे और नीचे।
एक तो हाउसवाइफ बहुत ही थैंकलेस जॉब भी है, कोई इसको मानता ही नहीं है कि कुछ करती भी है।
एक बहुत अच्छा ऐड आया था बीच में, कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में बोलते हैं कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट देंगे, मतलब आपकी जो सैलरी है उससे 3 गुना ऊपर। खुश हो जाते हैं वो, अच्छा अच्छा बताइए बताइए क्या करना पड़ेगा। तो बोले देखिए आपका जॉब जो है ना वो 24 आवर्स का जॉब है, और उसमें कई बार आपको खाना भी समय पे नहीं खाने मिल पाएगा, उसके लिए सॉरी। और वो फॉरेनर्स ने बनाया था, तो बोले नहीं नहीं क्रिसमस वगैरह न्यू ईयर वगैरह कुछ कोई छुट्टी नहीं। सैटरडे संडे बोले नहीं नहीं सैटरडे संडे आप कैसे, कैसी बात, सैटरडे संडे पॉसिबल ही नहीं, वो क्रिसमस में तो आपका काम बढ़ा रहेगा
क्योंकि गेस्ट आएंगे
और न्यू ईयर में तो आपका काम बढ़ा रहेगा और सोने का भी कोई समय नहीं रहेगा। मतलब बीच में दे देंगे हम आपको सोने, लेकिन आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, टेबल पे जो रखा है आपके बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं होगा। तो वो लोग बोलते हैं 365 डेज रोज काम, कोई सैटरडे संडे नहीं। तो 3 गुना ऑफर करते होते ना तो बोलते हैं नो वी डोंट वांट दिस जॉब। अब तब वो जो इंटरव्यूअर होता है बोलता है एवरी मॉम डज इट,
एब्सोल्युटली
एवरी वुमन डज इट। और तब उनको रियलाइज होता है, एंड देन सम पीपल स्टार्ट क्राइंग, एंड देन दे कॉल देयर मॉम्स ऑन कैमरा, मम्मा थैंक यू सो मच, मम्मा आई एम रियली सॉरी, आई डिड नॉट सी दिस,
करेक्ट,
मम्मी को बोल कैसा लग रहा है. तो ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी थैंकलेस जॉब.
एब्सोल्युटली. शादी में से आपके हिसाब से एक कॉम्प्रोमाइज है या फिर एक पार्टनरशिप है?
आप दुखी हैं तो कॉम्प्रोमाइज है, खुश हैं तो पार्टनरशिप.
व्हाट अ वंडरफुल आंसर.
और अगर आप दुखी हैं तो उसमें दोनों का हाथ बराबर
है,
और अगर आप खुश हैं और वो पार्टनरशिप है तो उसमें महिलाओं का हाथ ज्यादा है. उनकी उम्मीदें हमसे कम रहती हैं, ये सच है. कई बार हम जो बोलते हैं ना जीवन की आपाधापी में हम इतने उलझ जाते हैं बाहर की दसियों. देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई गलत है. आप मैं अभी एक दिन ऐसी घड़ी देख रहा था और मेरे जहन में एक बात आई कि सोचिए कि अगर मिनट और घंटे का कांटा बराबर हो जाए तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि हमको समझ में नहीं आएगा कि कब 3:15 हो रहा है और कब 8:45 हो रहा है.
Absolutely.
है ना, हो गया ना ये. क्यों? क्योंकि दोनों कांटे बराबर हो गए ना. तो हर बार घड़ी में कन्फ्यूजन है कि इसमें से मिनट का कांटा कौन सा है और घंटे का कांटा कौन सा. रिश्ते जब बिगड़ते हैं तो उसमें भी मेरा मानना है कि महिलाओं को ज़्यादा झेलना और बर्दाश्त करना
पड़ता है. बिल्कुल करना पड़ता है.
लेकिन ऑन द अदर हैंड पुरुष बहुत सारी ऐसी बात जो बाहर बर्दाश्त करते रहते हैं नहीं बताते.
दोनों के अपने टर्मोइल्स आए हैं, उनका कुछ और है, महिलाओं का कुछ और है. तो शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग आई थिंक वन शुड डू.
नॉट ऑल द टाइम, इट इज इजी टू से, इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल टू डू. देखिए आप सोचिए कि अगर मैं किसी बात को लेके बहुत परेशान हूँ, बॉस को लेके, काम को लेके, लोन को लेके, है ना, या EMI मैं नहीं दे पा रहा हूँ, कोई भी ऐसी दिक्कत, लेकिन मेरी जो समकक्ष है अगर वो हाउस वाइफ, मैं तो परेशान हूँ. मैं आके अगर उन पर भी उड़ेल दूंगा, पता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो करेंगी क्या? वो तो हाउस वाइफ. तो हम पुरुष ये सोचते हैं कि यार मेरी जो परेशानी है वो मैं अपने तक रखता हूँ, क्योंकि वो मदद नहीं कर पाएगी, एक ही काम कर पाएगी मेरे साथ साथ परेशान होने का. तो हम वहाँ पे आपको सिक्योर करने की कोशिश करते रहते हैं बाई नॉट टेलिंग यू एंड टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोन. कि यार हेल्पलेस फील करेगी, मदद कर नहीं पाएगी. मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि मुझे मेरे पे कर्जा है, मुझे पैसे दे दो. फिर जब रिश्ता बिगड़ेगा तो मेरे पे घरेलू प्रताड़ना केस लग जाएगा.
एब्सोल्युटली. आजकल बड़ा कॉमन हो गया ये.
मैंने मदद मांगी फिर भी मैं दहेज मांग रहा हूँ, है ना.
बिल्कुल.
तो ये सारी चीज हम लोगों के भी दिमाग में, हम भी डरे रहते हैं आपसे, हम भी सोचते रहते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और हर वो चीज जो हमको लगता है कि हम ही को झेलना है और हम ही को खत्म करना है, वो हम आप तक लाते नहीं कि कम से कम घर के अंदर का माहौल ठीक रहे. और फिर जब हम आप तक लाते नहीं, हमारे दिमाग में तो चल रहा है, तो हम चुप हो जाते हैं, हम बोलना कम कर देते हैं, हम कहीं खोए से रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम थोड़े झुंझला जाते हैं, हम थोड़े चिड़चिड़ा जाते हैं. और उस समय फिर आपके साइड से ये रिएक्शन आता है कि तुम बदल गए. वो टेम्पररी होता है. तो इस तरीके से बिगाड़ होना मुझे लगता है शुरुआत है. अब तुम मुझसे कम बात करते हो.
हाँ.
जैसी जो चीज़ें आती हैं, नहीं मैं आपसे कम बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे मालूम है मुझे अकेले ही निपटाना है. तो जब मुझे अकेले ही निपटाना है तो मैं आप तक खिला के आपको क्यों उसमें शामिल करूँ? और आपको लगने लग जाता है कि कुछ तो है जो ये छुपा रहा है. आप गलत नहीं है, छुपा तो रहा है, लेकिन छुपा आपकी बेहतरी के लिए रहा है, वो बेहतरी नहीं समझ में आती. सॉरी यार.
आपके हिसाब से कामयाब मैरिज का क्या फॉर्मूला है?
दोनों को काम करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को बराबर स्पेस देना चाहिए.
बिल्कुल, आई एग्री.
देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरी अपनी थ्योरी है. आप सोचिए अभी जैसे ये आपका खूबसूरत सा मग है, इस मग में पानी, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है. मैं इधर करता हूँ ताकि कैमरा, यहाँ तक भरा हुआ है. अब इस पूरे पानी को मैं एक घूंट में पी जाऊँ या होंठ गीला कर करके धीरे 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 इस पूरे इंटरव्यू तक पीऊँ, ये मेरे हाथ में.
एग्जैक्टली.
मेरा मानना है कि प्यार भी एक पैमाने में होता है ऐसा नहीं कि प्यार का अंत नहीं है, हर रिश्ते में प्यार का अंत हो जाएगा। हमको ये डिसाइड करना होता है कि हम एक घूंट में सारा पी के ख़त्म कर दें या धीरे धीरे सिप बाई सिप चलता रहे जीवन भर।
राइट।
तो जब दो लोग पूरे समय साथ होते हैं ना, मतलब कितनी बात कर लेंगे आप और आपके समकक्ष कितना, तो क्या होता है कि जब दो लोग काम पे होते हैं उनका अपना अपना पैरेलल जीवन चलता रहता है, तो फिर एक तो टॉपिक ज़्यादा आ जाते हैं बात करने, और वक्त घट जाता है एक दूसरे के साथ। नहीं तो क्या होता है कि पत्नियाँ बिल्कुल ऐसे रेडी बैठी रहती हैं कि बस अब वो आएगा और फिर हम समय बिताएंगे।
हमारे समकक्ष तो पूरी बात कर लेते हैं, मतलब ही विल जस्ट टॉक अबाउट वर्क
आई एम श्योर
पूरे दिन।
देखिए मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों की बात, हर कपल
कमिंग फ्रॉम, हाँ जी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही,
सबकी हाइट पर्सनैलिटी अपब्रिंगिंग शहर काम सोच अलग अलग है, मैं हम लोग जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं। तो जब दो लोग काम पे रहते हैं ना, तो दोनों आके कई बार बोल देते होंगे बहुत थक गए सो जाते, नहीं तो क्या होता है कि बैठो बताओ
क्या हुआ,
अभी वो पूरे दिन बतिया के आया, वो थक गया भाई, उसको नहीं मन कर रहा आज बोलने का, है ना। तो वो प्यार को भी सिप बाई सिप लेंगे ना तो जीवन भर चल जाएगा, गट 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 करके पी जाएंगे तो आप बोलेंगे कि अब ये रिश्ता खाली हो गया, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं। हाँ नहीं बचा है, पूरा तो पी गया ना, हम सब कुछ जान रहे एक दूसरे के बारे में, कुछ नया नहीं है बात करने को, कुछ नया नहीं है सुनने को, तो फिर चुप्पी आने लग जाती है।
करेक्ट, यू राइट।
फिर दो अलग अलग कमरे में बैठ के लोग दो अलग अलग टेलीविजन देखने लग जाते हैं, एक कहीं सीरियल चलता रहता है, एक कहीं न्यूज़ चलता है।
हाँ, बहुत कॉमन ही है तो फिर।
फिर अगल बगल साथ में बैठ के देखना नहीं होता क्योंकि सब पता है। आप एक ही फिल्म को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर की दाल और बाहर की, ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन आप एक ही फिल्म आपको कितना भी पसंद हो कितनी बार देख लें, इसमें कुछ नयापन चाहिए रहता है।
ट्रू।
और आप इंसान हैं, आप नयापन कहाँ से लाएंगे? मैं अपना चेहरा बदल लूँ जी, मैं अपना बात करने अपनी आवाज़, मैं नहीं बदल सकता, मैं जो हूँ वो हूँ, तो उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके निकलना चाहिए।
आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी पहली शादी के साथ एक्सपीरियंस वॉज नॉट वेरी गुड, अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक हैप्पी लाइफ विद अ लवली वाइफ।
जी
तो आप
अनडाउटेडली,
है ना, सो आपकी दोनों शादी से आपकी क्या क्या लर्निंग है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या आप शेयर करना चाहेंगे?
एक तो पहली शादी में दोनों ही छोटे थे, दोनों ही अपने आप को ही समझ रहे थे, साथ में एक दूसरे को समझने में निकल गए थे। तो आप एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है, एक एक दिन अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है ना, ताकि हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक टेन्योर एक वक्त मिले।
एब्सोल्युटली।
हमने वहाँ पे सबसे पहली गलती तो यही कर ली थी दोनों ने कि हमने शादी बहुत जल्दी कर ली थी। उस समय शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीवन भर का बंधन है, इन चीज़ों की समझ ऊपरी सतह से थी, डेप्थ नहीं पता,
डेप्थ नहीं पता था।
अब जो हमारी मैरिज है उसमें जो मैं ये जो मैंने आपको कप का और पानी का एग्जांपल दिया वो वैसे ही चलता है। हम पूरे समय साथ रह नहीं पाते हैं क्योंकि वो भी अपने वो काम में व्यस्त हैं, मेरा बहुत ज़्यादा देशाटन होता रहता है, आई एम ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस
एग्जैक्टली।
मतलब आप सोचिए कि मैं मुंबई के अपने घर से निकला था 12 जनवरी को और मैं मुंबई के अपने घर वापस पहुंचूंगा 13 फरवरी को।
ओह माय गॉड, दैट्स अ
पिछले एक घंटे से सूट के एक महीने से सूट केस में रह रहा हूँ, लगातार टॉक शोज, मीटिंग्स, लिटरेचर फेस्टिवल्स, बुक फेयर्स, पॉडकास्ट, ये सब चल रहा है। तो हम जब मिलते हैं ना तो हमारे और हम अपनी बातें रोक के रखे रहते, तो जब मिलने वाले होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बात करने। कैसे होता है जब दो दोस्त अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं और जब मिलते हैं तो क्या होता है कि घंटों घंटों दिनों दिनों बैठे रहते हैं,
राइट,
है ना, गर्ल्स हो या बॉयज।
एग्जैक्टली।
तो अगर आप अपने एक पति पत्नी के रिश्ते को दोस्ती के रिश्ते में तब्दील कर पाए, जो मैं जानता हूँ कहना आसान है करना मुश्किल, हम लोगों ने कर लिया,
व्हिच इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू आई थिंक।
मतलब मुझे कोई अति में पसंद करता होता है तो वो भी मैं उनको हंसते हंसते बता देता हूँ, पता है ऐसा हो। तो इस तरीके का अब वो भी काम करती हैं तो उनके आसपास भी मेल कलीग्स हैं, तो जब हम मिलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी गॉसिप्स होती करते हैं, बिचिंग भी करते हैं हम साथ में,
मज़ा आता है,
बहुत मज़ा आता है। जो बोले कि मुझे गॉसिप और बेचिंग में मजा नहीं आता, झूठ बोल,
बिल्कुल एग्जैक्टली,
या उसको जीवन में अब कुछ रस बचा नहीं,
एग्जैक्टली,
क्यों नहीं करना चाहिए और अपनों से
निकल, रिजुवनेशन है वो तो,
हाँ बड़ा पता पता आज का हो,
एग्जैक्टली,
मजा आता है वो करने में. तो इसलिए वो पहले क्या हुआ, पहले एक घूट में खत्म हो गया, अब क्या हो रहा है, वो सिप सिप चल रहा है.
मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी आपकी वाइफ के बारे में. उनका नाम तो आप बीजी बुलाते हैं, पर उनका नाम बुलबुल जो है बहुत ही प्यारा नाम है. वो आपकी जिंदगी में आके आई थिंक जिंदगी चहका गई आप.
बिल्कुल बिल्कुल.
सो ही रियली सर्व्स अ नेम वेरी वेल इन योर लाइफ.
नहीं, मैं जब हम दोस्त बने थे तो क्या होता था, कभी उस समय तो फ्लाइट वाइट के पैसे नहीं होते थे, स्ट्रगलिंग डेज से, तो कभी मैं बस में हूँ, कभी मैं ट्रेन में हूँ, तो अगल बगल लोग सट के बैठे रहते हैं. तो इनका फोन अगर तो मैं अगर ऐसे बोलता था ना कि हाँ बुलबुल मैं बैठ गया, तो मुझको ऐसा लगता था कि लोग बोलेंगे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव क्यों कर, बाबू बेबी सोना जैसा वर्ड है.
करेक्ट.
तो मैं बोला यार पब्लिकली मेरे को ऐसा लगता है, और आपको कोई और भी ऐसे बुलबुल बोलेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा.
राइट,
है ना, ये बड़ा प्यार वाला शब्द है.
हाँ.
तो मैं बोला कि आपका नाम बुलबुल गोयल है तो हम आपको बीजी बोलेंगे. फिर उन बुलबुल गोयल को गुप्ता जी से प्रेम हो गया
तो बीजी रहे,
तो गुप्ता के कारण शॉर्ट फॉर्म बीजी का बीजी रह गया. अगर मैं कुछ और होता तो उनका शॉर्ट फॉर्म शायद बदल जाता.
वंडरफुल. अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि आपके हिसाब से, हम लोग बोलते हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर, शादी के बाद मतलब सब कुछ सही है, बहुत सुंदर है सब कुछ, क्या ये रियलिटी है या सिर्फ कहानियों तक सीमित है?
2014 तक मुझे लगता था कहानियों में ही सीमित है. आज 2025 में मुझे लगता है कि हाँ ये रियलिटी है. एक कपल को मैं देखता हूँ जो मेरे माता पिता है, वो लव मैरिड है.
वाओ.
आज से 50 साल पहले आज भी लड़ते हैं, कौन नहीं लड़ता है, झगड़ा होता है, बहस होता है. इन्होंने बड़ा एक अच्छा सिस्टम बना रखा है, किसी बात पे इनका झगड़ा हो भी जाए तो ये दोपहर को और रात को 2 घंटे बैठ के रमी खेलते हैं आपस में.
रियली?
डेली.
वाओ.
लत है दोनों.
हाँ.
आप समझ रहे हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, जुआरी हैं दोनों के दोनों.
अच्छा है ना, मतलब दिस इज अमेजिंग.
हाँ, और दोनों एक दूसरे से पैसे का लेन देन भी बराबर करते हैं, लाखों का हिसाब चल रहा है उन लोग का आपस.
वो तो खैर गुप्ता के हिसाब से बन जाता है ना, मतलब दे हैव टू बी दैट.
तो एक जो जो कर्जे में है वो रोज खेलना चाहता है कटवाने के लिए, और जो आगे चल रहा है उसको और चाहिए.
हाँ.
तो जब झगड़ा हो जाता है इन लोग का तो भी ये लोग उस दिन बैठ कर रमी खेलते हैं, बस बात नहीं करते.
अच्छा.
उस दिन वो ज्यादा प्रोफेशनली खेलते हैं.
अच्छा.
है ना, ऐसा टेबल पे जैसे होता है ना कि आप और हम एक दूसरे को जानते नहीं, हम क्यों बात करें. उल्टा जब हमारे बीच में बात नहीं है तो आपको मुझे समझना, मुझे आपको समझना ज्यादा कठिन हो जाए. लेकिन झगड़े के बावजूद भी उनका काम भर की बात होती है कि जैसे ही डैड जीतते हैं तो बोलते हैं कि ये अमाउंट इतने का इतना हो गया. अच्छा. सामने से माँ बोलती है फिर अगला गेम शुरू हो जाता. लेकिन वो खेलते रहते. तो 50 साल उनकी शादी को हो गया है. तो मैं ये सीखा हूँ कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा और मेरे झगड़े होंगे तो मैं रमी खेलना सीख लूंगा. हाँ. मुझे आता नहीं है.
हाँ.
पर 2-4 ताश के खेल सीख लूंगा कि अब पास में बैठने का कोई कारण तो बना रहा है.
एग्जैक्टली.
और जैसा कि मैंने बताया कि और अब मेरे नज़र में मेरी अभी जो समकक्ष हैं वो बहुत अलग हैं. मैं उनको सिर्फ एक पत्नी के तौर पे नहीं देखता हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनको दोस्त के तौर पे भी देखता हूँ. मैं मेरे हाथ पे कोई भी नया चेक आता है या अवार्ड आता है या कोई नया एग्रीमेंट साइन होता है तो मैं उनके हाथ में रख के अपने दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ. वो मेरे मुझसे 3.5 साल छोटी है. और ये मैं कैमरे पे पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ. और इस देश के युवाओं की ये खूबसूरती है कि मुझे आज तक इस बात में किसी ने ट्रोल नहीं किया.
बहुत अच्छी बात है.
किसी ने ये नहीं बोला कि, जैसे बोला जा सकता है ना कि कैसा है, और एक खराब कमेंट नहीं आता इस बात पे. तो मेरा मानना है कि आने वाला यूथ इस थॉट को, इस फीलिंग को पुराने लोगों से बेहतर समझ रहा है.
मतलब मैं कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी ऐसा ही करते हैं कि चेक देते हैं मेरे हाथ पे, पैसे आएंगे मेरे हाथ पे, अग्रीमेंट साइन होगा मेरे हाथ पे, बस पैर नहीं छुलाते, वो छुआना शुरू कर दूंगी मैं.
नहीं, वो आप बोल के करवाया तो क्या करवाया.
ये भी है, आप शायद सुनने तो करना शुरू कर दें.
और ये सब जो आप बोल रही ना कि ला के मेरे हाथ पे देते हैं, मैं उनके मुंह से सुनूंगा कभी तब मानूंगा.
हाँ, बिल्कुल.
जो कर रहा है वो बोलेगा तो माना जाएगा.
हाँ, बिल्कुल.
तो अभी हम आपकी इस बात को खारिज करते हैं.
ठीक.
उन्होंने मेरी जो समकक्ष हैं बुलबुल उर्फ बीजी, वो मेरी दोस्त बनी थी मेरे सबसे बुरे वक्त में, जब मेरे लोग मेरे साथ छोड़ रहे थे, मेरे अपने मुझ मेरा फ़ोन उठाना छोड़ चुके थे. तब किसी दोस्त के थ्रू उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि मैं जो कर पाऊंगी करूंगी, जितना संभाल पाऊंगी संभालूंगी। उन्हीं के खर्च पे मैं पहली बार मुंबई आया, उन्हीं के खर्च पे मैं फ्लैट का किराया दिया हूँ सालों। वो काम फिर हमको, हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, हमने शादी की। उसके बाद कई साल वो काम करती रही और मैं कमरे में घर में बैठ के चुपचाप लिखता रहा। मैं 6 साल बैठ के द हिडन हिंदू लिख रहा था और वो 6 साल काम कर रही थी कि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ, जी पाऊँ। बात यह है कि जब मैं घर में बैठा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिस्ट, क्योंकि वो जीवन में सच में जिया हूँ। और उस 6 साल में कभी उनके चेहरे पे इस बात की शिकायत नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम घर में बैठे रहते हो। मैं कई बार झुंझला जाता था कि अगर नहीं चला, कोई नहीं लिया तो क्या करूँगा यार। तो बोलती थी कि इतना तो मैं कमा लेती कि हम दोनों चला लेंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि पुरुष ही बाहर कमाएगा और महिला ही घर संभालेगी? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बाहर अच्छे से काम संभाल लूँगी। घर तो आपको, घर में रहना ऐसे भी पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा मिलना मिलना पसंद, ये मेरे प्रोफेशन का हिस्सा हो गया कि मैं इतनों से मिलता हूँ। लेकिन जब मेरा खाली दिन होता तो मैं ऐसा नहीं कि चलो मॉल चले कहीं, मैं अकेले चुपचाप घर में रहना चाहता हूँ। तो मुझे पसंद है घर में रहना, तो मुझे उस चीज़ की लिबर्टी थी। महिलाओं के प्रति मेरा हमेशा से, क्योंकि मैंने बताया मेरे पिता आप करके बात करते देखा, तो सम्मान बहुत ऊपर रहा है मुझसे। इस देश की अनगिनत महिलाएं बहुत प्रेम करती, कोई भाई के तौर पे, कोई दोस्त के तौर पे, कोई somebody look up to me, जो भी। तो हाँ, आप और मेरी समकक्ष मुझसे 3.5 साल छोटी है, लेकिन मुझे लगता है उनका सोल एज मुझसे बहुत बड़ा है। मैं उनको बड़े से बड़ा बुरा खबर सुना देता हूँ अपने बारे में कि मेरा ये नुकसान हो गया, तो बस हाथ पे हाथ रखती हूँ, बोलती हैं सब ठीक हो जाएगा। और मैं कोई बहुत बड़ी खबर दूँ, पता है इतनी बड़ी बात हो गई, तो मुस्कुरा के बोलती है होना तो था ही, पता था। तो बड़ी ऐसे रहती हैं हर कंडीशन में
बैलेंस्ड,
उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो उनका सोल एज, मैं विचलित हो जाता हूँ। मैं छोटी सी खुशी में नाचने को तैयार हूँ, मैं छोटे से दुख में रोने को तैयार। तो उनका सोल एज जो है वो
बहुत हायर होगा,
मुझसे बहुत बड़ा है।
जो इस तरह का बिहेव करती हैं तो डेफिनेटली 100%।
वो मुझे 5-6 साल अकेले संभाली। शादी के पहले कुछ 57-58 लाख रुपीज़ वो मुझ पर खर्च कर चुकी थी, बिना कमिटमेंट के, बिना लिखा पढ़ी। मतलब मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन अगर कोई उनके साथ ये कर देता कि कौन से 55-50-60 लाख रुपए, कौन हो तुम, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि कोई है। इतना भरोसा करना आज के समय में एक डिप्रेस्ड बंदे को, जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुका है, 33 ईयर्स की एज में लोग अपना करियर जमा चुके होते हैं, 33 ईयर्स की एज में एक पागल इंसान जो कि डिवोर्स का केस लड़ रहा है, सुसाइडल है, हार्ट पेशेंट है, कर्जे में डूबा हुआ है, वो बोल रहा है कि अब मैं इंदौर छोड़ के मुंबई जाऊँगा और वहाँ राइटर बनूंगा, और उस पर कोई भरोसा करे और बोले कि करो मैं संभाल लूँगी, तो देवी ही हो सकती है और कौन होगी।
एब्सोल्युटली,
तो हमको कोई शर्म नहीं आती, हम बड़े फक से, बेबाकी से और बेशर्मी से कहते हैं।
बहुत अच्छी बात,
दोनों हाथ से उनका दोनों पांव छूते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ
इट। एक तरफ आपकी खूबसूरत शादी और एक तरफ इंडिया में बढ़ते हुए डिवोर्स रेट्स, आपको क्या लगता है जो इतने डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसका क्या कारण है?
टेक्नोलॉजी कारण है, एक तो है ही। दूसरा, हम लोग का जो फोकस स्पैन, जो बार बार अलग तरीके से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, वो सिर्फ मोबाइल पे और स्क्रीन टाइम पे नहीं हो गया, और रिश्तों पे भी हो गया।
एग्जैक्टली,
है ना,
अग्रीड।
ये स्वभाव का हिस्सा होता जा रहा है एंड इट इज जस्ट नॉट कन्फाइंड विद द टेलीविजन स्क्रीन और रिमोट और मोबाइल और स्क्रोलिंग, इट इज विद एवरीथिंग, कि हमारा फोकस स्पैन हमारा, हम बोर बहुत जल्दी हो जाते,
बहुत जल्दी
बोर हो जाते। तो पहले क्या होता था कि कोई कुछ बोलता होता था तो थोड़ी देर बैठ के उसका पक्ष सुना जाता था। आजकल जैसे कोई कुछ बोलना चालू करता है तो ही होता है कि बोर मत करो यार, समझ गए यार, अरे सुन तो लो, समझ कैसे गए, अगले ने उसको शब्दों में ढाला भी नहीं, तुम समझ गए। तो फिर भगवा चोला धारण करके ऋषि बन जाओगे, बिना सामने वाले के बोले तो तुम समझ जाते हो। तो रिश्तों में सुनना और बोलना दोनों का स्पेस बराबर, उसका बैलेंस होना जरूरी।
इस पर एक ऐड भी मैंने कहीं पे आई थिंक देखा था, उसमें था कि नानी के घर बच्चे आए हैं, पहले तो बच्चे आम तोड़ते थे, नींबू के पेड़ पे चले जाते थे, अमरूद का खाते थे वहाँ जाके, आजकल सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप कहीं खो सा गया है, खत्म सा हो रहा है।
मुझे ध्यान नहीं है किनकी लाइन है, किसी ने बोला था शायद गुलजार साहब की लाइन है, बट आई एम नॉट श्योर, पर लाइन जिसकी भी बड़ी खूबसूरत है कि मेरे पास का मैदान अब खाली पड़ा रहता है, एक मोबाइल ने बच्चों की गेंद चुरा ली।
सीरियसली, सो ब्यूटीफुल, सो थॉटफुल
जी।
जो हमारा सनातन धर्म है
जी,
और सत्यलॉजी में जी, मैं भी आपकी तरह माइथोलॉजी नहीं बोलती, सत्यलॉजी
बहुत बहुत धन्यवाद,
क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ इस चीज पे। क्या शादी को कैसे डिफाइन किया गया, और सात फेरे जो हम हमेशा उसके वचन लेते हैं शादी के टाइम पे, उनका क्या मायना है?
मायने तो पुराने समय से, आप देखिए एक तो इतनी खूबसूरत बात है कि आपके पूरे संस्कारों में और आपके हिंदुत्व के अंदर में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
करेक्ट,
डिवोर्स अंग्रेजी शब्द है, तलाक 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 उर्दू शब्द है, उनमें ये जगह दी गई थी कि जमे तो ठीक है और ना जमे तो ठीक है, तो दैट इज अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला चक्कर ही नहीं है, आपने शादी कर ली तो
बंधन,
क्योंकि हमारा मानना है कि ये बंधन पंडित हाथ चला रहा है लेकिन बांध ऊपर वाला रहा है, तो ऊपर वाला का बंधा आप कैसे तोड़ देंगे मरने के बिना, मरने से पहले। तो हम एक तो ये चीज़ मानना है, तो सात फेरों में जो सात कस्में दी जाती हैं वो तो पंडितों की दी जाती है, लेकिन आजकल मैं कुछ युवाओं को देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि बोलते नहीं एट्थ भी है, नहीं नाइन्थ भी है, और वो खुद एक दूसरे को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वाओ, एक्चुअली क्रिश्चियन उसमें
VOWS,
बहुत सही समय पे आपने यूज किया इस शब्द को, मुझे याद नहीं आता, आपने वाओ बोला तो याद आ रहे, वाओ ही तो बोलते हैं वाओ। तो वो सेवन को एट नाइन टेन तक भी ले जाते हैं, और वो अपनी तरफ से उन सात के अलावा प्रोमिसेस करते हैं, एंड मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि सात अच्छा अंक है और बहुत महत्वपूर्ण अंक है, लेकिन मुझे लगता है दो तीन ऐसे भी होने चाहिए ना कि अपने शादी में महिला पुरुष से, अपने पति से या पति पत्नी से बोल पाए कि सुनो मेरे को एक ये भी वचन चाहिए, या सामने वाला खुद बोले कि मैं ये भी प्रॉमिस करती हूँ या करता हूँ, या सामने एक बोले कि मुझे ये भी प्रॉमिस चाहिए, तो कितना अच्छा है। वो सात फेरों पे सात चीज़ें जो सात कस्में हैं ना, उसको जो निभा लेगा ना वो डिवोर्स तक कभी नहीं पहुँचेगा। इसीलिए हमारे में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि हमको तो प्रण दिलाया जाता था कि ये सात चीज़ें निभानी पड़ेंगी, तो अगर वो सात चीज़ें निभानी पड़ेंगी तो फिर डिवोर्स
होता ही नहीं,
अलाउड ही नहीं है ना फिर, जरूरत ही
null and void,
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप आपने अग्नि को साक्षी मान के वो कस्में खाएं कि कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा, अगर आप वो करेंगे तो एक रिश्ता डिवोर्स की दहलीज तक पहुंचेगा ही, यही तो था।
एग्जैक्टली,
टूट गया।
पर आजकल के जमाने की शादियां आपको लगता है कि इसको मैच करती हैं, डिफाइन करती हैं?
देखिए ये ना बड़ा सब्जेक्टिव है, ठीक है डिवोर्स रेट्स बढ़े हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि हर वो कपल जो साथ हो रहा है वो डिवोर्स ही हो जा रहा है। हमारे आसपास ऐसे लोग भी तो हैं जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन हैं साथ कि जो भी है यार अब यही है इसके साथ, है ना, तो उन पे भी नजर डाली जाए।
एब्सोल्युटली,
और हर जगह हर तरीके के लोग हैं।
आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैरिजेस हमें सोचना चाहिए कि हम एक बच्चे के लिए आप साथ में रुक जाओ, बच्चे होते हैं आजकल, मैं देखती हूँ कि बड़ा आजकल स्टेटस सिंबल बन चुका है। मेरी बिटिया है, शी इज इन ग्रेट 10, तो वो बोलती है कि वो ना उनका डिवोर्स हो गया, वो दे स्टे सेपरेटली, तो बड़ा स्टेटस सिंबल है आजकल ये। लेकिन अच्छा लगता है कि पहले कुछ भी लड़ाई झगड़े होते थे तो माँ बाप अपना मिलके कि नहीं यार हम बच्चे के लिए साथ रह लें, बिकॉज ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव दैट बच्चे को खाली माँ नहीं चाहिए होती, बाप भी चाहिए होती।
जी, काश ये हर माँ को और हर परिवार को समझ में आता। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, ऑल्दो आई एम अ नोबडी फॉर देम, मगर आई फील वेरी हैप्पी फॉर मिस्टर ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान।
यस,
दे हैंडल्ड, उन्होंने डिवोर्स किया बट दे हैंडल्ड देयर किड्स सो वेल।
एब्सोल्युटली,
है ना, तो ये मैं इस मामले में बड़ा बदकिस्मत रहा अपनी समकक्ष के साथ कि उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, मुझे मुझसे आपको मुझसे प्रॉब्लम है आप मुझसे लड़ो।
एग्जैक्टली, बच्चों को बीच में नहीं लाना
चाहिए, आप मुझे तकलीफ दो, आप उस बच्चे का बचपन, आप आज की डेट में मेरे को लगभग पूरा देश पहचानता है, जानता है, प्यार करता है, मान करता है, आज आप उसको मुझसे नहीं मिलने दे के किसका नुकसान कर रहे हो, सिर्फ मेरा।
नुकसान तो उसका हो रहा है बिकॉज लर्निंग मिलती है आपसे, एजुकेशन मिलती है, वैल्यू सिस्टम मिलता, कितना कुछ है एक जो माता पिता
नहीं, आप एक बार चलिए अपने आप को समझाने के लिए बोल दीजिए कि मेरा वैल्यू सिस्टम निहायत ही वाहियात है। चलिए मान लेते हैं कि सब आप ही के पास है और हम तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं, कोई बात। आज आप जहाँ खड़े हैं मैं उससे बेहतर पोजीशन में खड़ा हूँ, मैं अपने बच्चे को परवरिश, हालांकि ये गलत बात है, मेरी परवरिश खराब होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता जाऊँ।
बिल्कुल,
परवरिश का सबसे बड़ा हाथ होता है आपके सक्सेस में।
एब्सोल्युटली।
तो अगर आपकी परवरिश बेहतर है तो आप और आपके भाई और आपके घर के लोग क्यों नहीं पहुँच गए यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ आज। मैं आज किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में मेरी बात खाली नहीं जाएगी, क्योंकि मैं हर स्कूल, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आप अपने बच्चे का नुकसान करने को तैयार, मुझे तकलीफ देने के लिए,
पर उससे कुछ मिलेगा नहीं आगे चल के, सब सच सामने आ
जाएगा। नहीं नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो समय उस बच्चे का चला गया,
वो चला जाएगा।
पिछले 10 साल का जो उसका समय चला गया और आने वाले कुछ और साल अगर चले जाएंगे, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? और जिस दिन उस बच्चे को समझ में आएगा कि क्या किया गया है इसको और इसके परिवार को सिर्फ तकलीफ देने के लिए, मेरे को हथियार बना के और मेरा भी समय और बचपन खराब कर दिया गया,
बिल्कुल बिल्कुल,
उस दिन आप क्या जवाब देंगे?
एब्सोल्युटली, यू आर राइट।
तो बच्चों को, आप में से सुनने वाले जो लोग भी हैं, मैं भुगत भोगी हूँ। अभी अतुल सुभाष वाला जो बैंक,
बहुत बुरा, बहुत ज्यादा बुरा।
मैं 2014 में अपने जीवन में वापस चला गया था। बहुत समय तक मैं तकलीफ में रहा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था ये कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। आप सभी सुनने वालों से मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं पट रही है अलग हो जाइए, ठीक है, बच्चों को मत घसीटिए। बच्चे को जितना सिर्फ चावल दे दोगे बच्चे को खाने को, या सिर्फ दाल दे दोगे बच्चे को खाने को, तो पूरा पौष्टिक आहार मिलेगा, पूरा शरीर सही बड़ा होगा, दोनों चाहिए ना। अगर आप पिता हैं और बच्चा आपके पास है तो उसको माँ से जुदा मत करो। अगर आप महिला हैं तो जीवन भर लड़ना है तो लड़िए, लेकिन उस बच्चे का बचपन मत खराब करिए, उसको मत घसीटिए, उसको कोर्ट में मत लाइए। एक दूसरे को विजिटिंग राइट्स के लिए और वो क्या बोलते हैं, कस्टडी के लिए
प्यादा मत बनाइए बच्चे का।
आप ये समझिए कि बच्चा बच्चा होता है, एक तरफ से माँ उसका हाथ खींचेगी और दूसरी तरफ से पिता उसका हाथ खींचेगा। हम लोग तो शारीरिक लोग हैं ना, बलशाली लोग हैं, कंधा किसका कमज़ोर होगा, हाथ किसका दुखेगा, तुम दोनों के बच्चे का। इसीलिए मैंने अपने बच्चे का हाथ दूसरी तरफ से छोड़ दिया, यही एकलौता कारण। नहीं तो मेरे पास भी विजिटिंग राइट्स है,
इसी को
मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ कि मेरा बच्चा हर महीने 2 बार कोर्ट आए। बहुत खराब ऑरा और माहौल होता है कोर्ट का, कोई चीख रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई रो रहा है, मेरे को नहीं दिखा रहा था, और दो तरफ से उस बच्चे का हाथ खींच रहे थे 6.5 साल के बच्चे का।
माय गॉड।
तो मैंने और मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि इसका कंधा दुख रहा होगा, किसी एक को जो ज्यादा प्यार करता होगा ना वो छोड़ देगा। तो हमने छोड़ दिया और तब से हम इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो अकल आएगी, या पूरे कुनबे और परिवार में किसी को तो समझ में आएगा कि जो जाके बोले, जिसका स्पाइनल कॉर्ड हो, जिसके कंठ में जबान हो, कि गलत कर रहे हो यार,
एब्सोल्युटली,
अपना और अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो। अभी तक तो नहीं समझ में आया, देखते हैं कब आए।
अच्छा, आपके हिसाब से जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली
जी
क्या बेहतर है?
हमेशा जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, हमेशा जॉइंट फैमिली। मेरे फादर का अपने भाइयों से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, इन प्रकार कारण है उसके। कभी जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो गलती दोनों की होती, किसी एक की नहीं होती, किसी की ज्यादा होती, किसी की कम होती,
एब्सोल्युटली,
पर होती दोनों
दोनों की है।
सिर्फ ताली दो हाथ से नहीं बजती, गलतियां भी दो हाथ से होती है। तो कभी इनकी गलती रही होगी उनकी नजर में, कभी उनकी गलती रही इनकी नजर में, कुल मिला के संबंध टूट गए। हम सब छोटे छोटे थे, अब जब हम बड़े हुए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, तो हम सब वापिस जुड़े, खुद जाके मिल के, कि अब सबके सारे भाई, उन सबकी समकक्ष सारे बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करते हैं। न्यू ही फोन आ जाता है, एक बहुत प्यारा मेरा भतीजा है उसका नाम स्पर्श है, गांव में रहता है अंबिकापुर, अब वो गांव नहीं है, कस्बा हो गया शहर, वो यूं ही फॉर नो रीजन, चाचा प्रणाम।
वाह,
तो हम अलग अलग घरों में हैं, लेकिन हमने वापस न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली का सफर तय किया है,
दिल जोड़ लिए वापस आपस।
अरे बिल्कुल,
बहुत अच्छी
बात। हम साल में 5-1 बार इधर उधर मिल लेते हैं। अभी 3 दिन पहले छोटे भाई का यहीं कॉन्सर्ट था दिल्ली में, गुड़गांव।
क्या करते हैं वो?
वो सिंगर हैं और उनका अपना बैंड है, क्रिकेट शो भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। तो मेरे दो फर्स्ट कजिन सौरभ गुप्ता और सौमित्र गुप्ता, ये दोनों यही रहते हैं, मतलब हमारे सगे बड़े पापा के बेटे हैं।
अच्छा,
तो वो दोनों आए, उनकी पत्नी आई, मेरा सगा छोटा भाई स्टेज पे और हम तीनों भाई यहाँ बैठे, फिर हम तीनों स्टेज पे गए।
वाओ,
वो हमने भेजा बाकी भाइयों को जलाने के लिए कि नहीं थे, मजा नहीं, हम लोग को मजा नहीं। तो हम सब मिलते हैं, खूब प्यार करते हैं। मैं कुछ तस्वीरें भेज दूंगा आपको अपने पूरे भाइयों की, जहाँ हम अभी रिसेंटली इंजॉय कर रहे थे, डाल दीजिएगा लोगों को। अब मुझे लगता है कि बड़ा आसान होता है इन तलखियों को मिटा देना। इट टेक्स अ मिनट टू सॉर्ट थिंग्स आउट, बट इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स जस्ट अ मिनट टू सॉर्ट थिंग्स आउट। वो समझते समझते आधा जीवन बीत जाता है कि बस एक ही मिनट की तो बात थी।
करेक्ट,
अगर आप बड़े थे तो बस आपको जाके टपड़ी मार के बोलना था कि अभी छोड़ ना, हो गया, जा चल इधर आ। और अगर आप छोटे हैं तो बोले कि मारना है तो मार लीजिए, खत्म करिए ना बात को।
नहीं, पर उस टाइम के माँ बाप ऐसे ही बहुत बोलते थे, हमारी उनसे बात नहीं करी, तुम भी उनसे बात मत करना।
हाँ, ये हो रहा है सबके साथ।
मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ, हमारा किसी के साथ जैसा भी हो, आप अपने रिलेशन हमेशा मेंटेन करना। कल को हम हो ना हो, कम से कम अपने भाई बहन तो साथ में हो।
नहीं, हमारे घर में हमेशा ये जरूर बोला गया कि बेटा बड़ों में जो भी चल रहा है, लेकिन कभी आमना सामना हो तो आप अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे।
बहुत अच्छी बात,
आपको झुक के पांव छूना है, वो बड़े हैं, बड़ों का क्या चल रहा है उससे आपको इफेक्ट नहीं होना।
राइट,
उस कारण से हम कम से कम, कभी हमारे भी परिवारों के बीच में ऐसा नहीं हुआ कि अब तो मतलब दुश्मनी हो गई, चुप्पी हो गई थी, उस चुप्पी को
तोड़ लिया। वॉर,
हाँ, उस चुप्पी को तोड़ लिया तो सब हंस रहे साथ।
बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता।
इससे अच्छा इकोसिस्टम नहीं हो सकता। आपका पूरा परिवार अगर जॉइंट फैमिली साथ होते हैं ना, तो और सबके लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए अच्छा है।
बच्चे पल जाते हैं अपने आप आपस में, पता ही नहीं चलता। और अभी आजकल मेट्स के भरोसे रहते हैं, क्या वैल्यू सिस्टम मिलता है हमें पता ही नहीं है। बल्कि उस टाइम पे सब साथ में रहते थे तो मजे आते थे, और बच्चों को भी फैमिली में खेलने को लोग मिलते थे।
हाँ, चार कहानियां चाची ने सुना दिया, चार कहानियां बड़ी मम्मी ने सुना दिया, किसी के भी घर सब बैठ के खाना खा लिए, किसी एक कपल को कहीं जाना है इत्मीनान से सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, बाकी पूरा परिवार
संभालने के लिए। अच्छा, एक टॉपिक है कि मैरिज के बाद लोगों को पहली वाली किलिंग नहीं आती, लोग बोलते हैं आप बदल गए जैसे आपने बोला, और अब हम बड़े बोर होने लग जाते हैं लोग।
सच,
तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे और क्या एडवाइस करेंगे आप?
नहीं आएगी ना पहली वाली फीलिंग, कैसे आएगी पहली वाली फीलिंग? उसके साथ आप यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ नहीं आएगी पहली। ये बोलना कि नहीं नहीं आनी ही चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स इम्प्रैक्टिकल टू से। क्योंकि जैसे जैसे आप किसी को जानने लग जाते हैं, चाहे मानसिक तौर पे, चाहे चाहे इमोशनल तौर पे, चाहे फिजिकल तौर पे, नया नहीं बचता ना कुछ।
एग्जैक्टली,
तो फिर वो उसमें बोरियत और फटीक आने लग जाती, चीज आएगी नेचुरल।
तो नया अपन कैसे लाया जाए?
घूमने जाइए, कोई नया कोर्स ज्वाइन कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सिखाइए। आप अभी तक हाउस वाइफ हैं तो कुछ करना शुरू कीजिए,
which is very important actually.
आप अगर आपको लग रहा है कि you have collected and you have made enough money, give yourself a break.
Absolutely, I think you're right.
और मतलब देखिए, मेरा मैं हमेशा खुद के लिए भी मानता हूँ, सबको बोलता हूँ कि अगर आप इन 4-5 सरनेम में से एक नहीं है, टाटा, बिल्ला, अंबानी, अडानी, और भी 2-4 इस तरीके के सरनेम है, अगर आप उनमें से कोई नहीं है, और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, तो देश में किसी को मतलब नहीं कि आप कौन है।
एग्जैक्टली,
फिर आप कोई भी,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आप एक और अच्छी गाड़ी ले लें, आप घर एक नया बड़ा फ्लैट या बंगलो ले लें, अनगिनत बंगले हैं, करोड़ों बंगले हैं, अरबों फ्लैट्स हैं, हु केयर्स कौन से दरवाजे पीछे कौन रहा, ये सब हम अपने दिमाग में चलाते रहते,
कहानियां चलती रहती हैं।
है ना। तो अगर आप टाटा बिरला अंबानी अडानी नहीं है और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है तो इन दोनों के बीच में आप कौन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने इतना अर्जित कर लिया है कि आपका समय आराम से चलेगा, तो फिर कितना हाय हाय करेंगे, तो उस हाय हाय का अंत कहाँ है। अनगिनत बार हम रील्स देखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि मेहनत करते करते, काम करते करते अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, खूब पैसा कमाया, फिर वो पैसा हॉस्पिटल
में लग गया।
आखिरी में ज्यादातर लोगों को ये दुख रहता है कि यार इससे थोड़ा कम काम करके थोड़ा कम कमा लेते, इतना छोड़ के जा रहे हैं, उससे अच्छा अपने मन का कुछ कर लेते।
बिल्कुल सही बात।
तो अगर 2, 5, 8, 10, 15, 50, 100 करोड़ रुपए आपके पास है तो आराम करो,
अपने लिए जीना शुरू कर दो, अपने शौक पूरे करने लग जाओ,
नई चीजें सीखो, नए कोर्सेज ज्वाइन करो, चार लोगों का भला करो।
बिल्कुल बिल्कुल।
किसी दिन बस बोल दो कि भाई आप रिश्ता क्विट करने के लिए बोल देंगे कि आई क्विट, लेकिन और पैसा कमाने को क्यों नहीं बोल सकते कि आई क्विट।
राइट।
कितना चाहिए, कोविड में सब रुक गया था तो पूरे देश को समझ में आया था कि
सब थम गया था,
इतनी सी
हाँ।
पता नहीं क्यों दौड़ रहे। दी ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री।
करेक्ट।
हम सब फिर वही कर,
बल्कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है अगर आप देखा जाए, अगर हम उस लालच में ना जाएं, हमें खाने में पेड़ में सब कुछ उगता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, पर हमने उसको कभी अहमियत ही नहीं दी और के चक्कर में हम पीछे होते चले गए।
कौन सा ऐसा पक्षी है, कौन सा ऐसा जानवर है जो पैसा कमा के खाना खाता है?
एब्सोल्युटली।
सबका चल रहा है
राइट।
हम पता नहीं क्या चीज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, करो भाई।
अच्छा एक बात बताइए, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, आप किसका साथ देंगे?
मैं लव मैरिज का साथ दूंगा।
ऐसा क्यों?
देखिए आपका जो समय है ना उसमें सामने वाले को, आप एक बात बताइए, चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप कोई ड्रेस खरीदने जाती हैं, आप मतलब कोई भी
एक्स वाई जेड,
आप एक दुकान में जाते हैं, उस एक दुकान में आप 10 ड्रेसेस देखते हैं, फिर आप उसके बगल वाली दुकान में जाते हैं, फिर आप वहां भी 10 ड्रेसेस देखते हैं, ऐसे आप 6 दुकानों में घूम के 60 ड्रेसेस देखते हैं। हो सकता है उसके बाद आप वापिस पहली दुकान में आए और वही पहला ड्रेस उठा लें,
लेकिन बिल्कुल
वो ड्रेस आप 10 बार 20 बार पहनेंगे और फेंक देंगे, है ना, खराब हो जाएगा, उसका मटेरियल उसका फैब्रिक खराब हो जाएगा, आप किसी को दे देंगे, पोछे में यूज कर लेंगे, फेंक देंगे। आप जिसके साथ पूरा जीवन बिताने वाले हैं, वो कैसे आप 15 लोग के बीच में बैठ के आधे घंटे बात करके डिसाइड कर लेंगे कि हाँ चलो। हम एक मतलब अरेंज मैरिज में जितनी देर में लड़के लड़की एक दूसरे को डिसाइड कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा उसी शादी के लिए लहंगा डिसाइड करने में टाइम लगा।
बिल्कुल absolutely.
ये सच है।
हाँ बिल्कुल सही।
सूट कैसा बनेगा, कहाँ पे बीट लगेगा, है ना,
बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसके साथ क्या पहनेंगे, उसके साथ क्या पहनेंगे, वो क्या बोलते हैं लेडीज संगीत में कौन किस गाने पर डांस करेगा, उसका सिंक्रोनाइजेशन करेक्ट है कि नहीं, इतने दिन प्रैक्टिस होगी। अरेंज मैरिज आप एक लहंगा एक ड्रेस और उस 3 दिन का इवेंट तैयारी करने में जितना समय लगा रहे हैं, उसका आधे का आधा समय नहीं लगाया आपने ये डिसाइड करने के लिए कि मैं पूरा जीवन
इस व्यक्ति के साथ
किसके साथ बिता दूंगा। ऐसे कैसे फिर डिवोर्स नहीं होगा तो क्या हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लव मैरिज में नहीं हुआ है, पर लव मैरिज में जब डिवोर्स होता है या अच्छा चलता है तो क्रेडिट और डेबिट ना उन दो लोगों का होता है।
बिल्कुल absolutely,
नहीं तो वो दोनों जीवन भर अपने परिवार को कोसते रहते
हैं। हाँ,
और कराओ और जल्दी थी तुमको,
आप ही ने
तुमने चुना
था, हाँ।
और ज्यादा पैसे जमा कर लो।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है।
और आप देखिए ना आपके समय में हिंदुत्व जाना जाता है अपने समय के साथ लगातार बदलाव करने में, इसीलिए हम पुराने नहीं होते।
बिल्कुल।
हम स्टेल नहीं होते हैं, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, हमारा पूरा धर्म बहता हुआ है, हम हमेशा उसमें से निकाल निकाल के गलतियां सुधारने को आज भी तत्पर
हैं। आज भी सर।
आप 2025 में है, हर आदमी गांव गांव में लड़के लड़कियों के हाथ में इंटरनेट है और फोन है, आप उनको निर्णय लेने दीजिए। आप जो एक तरह बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए, बहुत समझदार हो गए,
हाँ।
जल्दी बड़े हो जाते हैं, हम माँ बाप को सिखाते हैं, उनको लेने दीजिए ना उनका अच्छा बुरा। भाई फॉरेन कंट्रीज में हम फॉरेन कंट्री से 100 गंदी चीजें उठा लाते हैं, उनके प्रोसेस
करेक्ट.
जैसे कि ये शब्द है औरत, हम महिलाओं पे बहुत बात कर रहे हैं, आपको पता है औरत का मतलब क्या होता है?
नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए.
सुनेंगी ना तो उसके बाद अगर आपके सामने आपको या किसी और महिला को कोई औरत बोलेगा ना, आपकी भौहें तन जाएंगी और आपकी उंगली उठेगी कि मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगली बार इस शब्द का. औरत का मतलब सिर्फ एक महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बस, और उसका कोई मतलब नहीं. जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है बार्क, बार्क का मतलब भौंकना भी होता है और पेड़ का तना भी होता है, उसे एक शब्द का दो मतलब है. इस एक शब्द औरत का कोई और मतलब ही नहीं है. गूगल कर लें आपके श्रोता और आप खुद भी बाद में, आप सोचिए कि हम क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
जहां एक हम देवी का दर्जा देते हैं स्त्री को, और इस तरह का शब्द बहुत ही अपमानजनक है.
तो वो जिन लोगों की सोच रही उन्होंने इस शब्द को प्रचलित कर लिया, क्योंकि उनके लिए महिला का काम सिर्फ घर में बैठना है और
बच्चे पैदा करना है. करेक्ट.
और बच्चे पैदा करने का जो प्रोसेस है बस. और आपको और मुझे मालूम नहीं हम उस शब्द को बोल रहे हैं.
एग्जैक्टली.
बदलाव
अब जाके आई थिंक समय आया है जब हम अपने धर्म को और अच्छे से पहचानने लगे हैं, नहीं तो हम सब खो गए थे उस अंग्रेजी में और उस सब कुछ में जो वेस्टर्न कल्चर है. अभी आई थिंक काफी बच्चे भी इस तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि दे आर बिकमिंग स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल भी गलत शब्द है, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं.
मगर अच्छी चीज है जो हमको दूसरे कंट्रीज से सीखना चाहिए. जैसे ये कि भाई डिसाइड करने दो ना दो लोगों को, किसको किसके साथ रहना.
बिल्कुल बिल्कुल.
कम्युनिटी और कास्ट और क्रीड ये सब से निजात पाओ. योगी जी थक जा रहे हैं बोल बोल के कि बटेंगे तो कटेंगे. बंद करो बटना और कटना. तो अब जो फॉरेन कल्चर ने में जो अच्छी चीजें लेनी है कि आप सही कह रही हैं कि पहले सरनेम्स नहीं होते थे, ये बात बात का डिविजन किया गया है और इंटेंशनली किया गया है हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के. पर अब कुछ बुद्धिजीवी खड़े हो गए जो बोल रहे हैं कि बंद करो उसको, तो बंद करो उसको.
बिल्कुल सही कह रहे हैं.
आप क्यों डिसाइड करेंगे किसी का जीवन कैसे चलेगा? देखिए बच्चे आपने पैदा कर लिए इसका ये मतलब नहीं है कि उन बच्चों के जीवन पे आजीवन आपका अधिकार है. बच्चे पैदा कर रहे थे कि स्लेव पैदा कर रहे थे? बच्चे पैदा कर रहे थे ना. जब आपको लग रहा है कि वो बड़े हो गए हैं तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि बेटा जिसके साथ समय बिताना है बिताओ, लेकिन तुम्हारी शादी 21 साल में नहीं कराएंगे. 28 साल के पहले तुमको शादी नहीं करने देंगे, 28 साल की उम्र में तुम जिससे बोलोगे करवा देंगे.
एग्जैक्टली.
वो ठीक, पर आप ये डिसाइड मत कीजिए कि आपको ये लग रहा है कि नहीं ये हमारे घर के लायक नहीं है, तो भाई आप बोलिए आप अलग रहो. आपका कल्चर आपके पूजा पद्धति अगर उसको नहीं आती है तो भाई कोई बात नहीं, पास में एक और घर ले लो बेटा. मिलेंगे ना शनिवार रविवार मिलेंगे एक टेबल में, कभी हम तुम्हारे घर आएंगे. देखिए मेरे पिता एक बहुत कमाल की बात बोलते हैं, और एक समय के बाद हर माता पिता को बच्चों को घर से अलग कर देना चाहिए.
बिल्कुल.
जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं कि एक छत के नीचे रह रहे, जॉइंट फैमिली का मतलब है कि सब संगठित हैं, अच्छे बुरे सुख दुख में एक दूसरे के बगल में आके खड़े. दैट इज व्हाट अ जॉइंट फैमिली मींस.
एग्जैक्टली.
नॉट कि एक छत के नीचे भर जाओ. मेरे पिता बोलते हैं कि दूर रह के पास रहना बेहतर है पास रह के दूर रहने से.
मेरे पिता भी हमेशा ऐसे ही बोलते थे.
वो बोलते थे और उन्होंने किया बाद में हमारे साथ कि बेटा ये ऐसा हो कि एक डाइनिंग टेबल है जिसमें आप आके बैठ रहे हैं और आपका छोटा भाई बोल रहा है कि ये खा लेंगे तो मेरे को बता देना तब आऊंगा खाने. इस आदमी के साथ नहीं बैठूंगा. और किचन एक ही है, उससे अच्छा ये है कि आप सब अलग अलग घर में रहें. कभी वो बोले कि भैया शनिवार को आइए ना यहाँ बैठेंगे
साथ बैठ
मैं आपके पसंद का खाना बनवाऊंगा. कभी आप बोलो कि यहाँ आओ फलानी चीज बनी है तुमको पसंद है. तो आप हफ्ते में एक दिन बैठे एक टेबल पे प्यार से हंसते बोलते बात करके अपने अपने रास्ते निकल जाए, बजाय इसके कि एक डाइनिंग टेबल में हूं और बात ना.
करेक्ट.
एकदम करेक्ट बात है.
बहुत प्रैक्टिकल, बहुत अच्छी बात.
दूर रहने से अच्छा है दूर रह के पास रहो.
अच्छा अक्षर जी एक बात है, आई रियली वांट टू नो
जी,
आपकी और आपकी फैमिली में भी जैसे आपकी माता है और आपकी वाइफ है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जहाँ आपको किसी की साइड लेनी होगी, तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस करते हैं?
मेरे पिता ने मुझे कमाल की चीज सिखाई है. मेरी पहली शादी का टाइम ही उन्होंने बोला था कि बेटा जब भी आपकी समकक्ष आके आपसे ये कहें कि माँ ने ये कर दिया, भैया ने ये कर दिया, किसी ने भी कुछ कर दिया, तो आप उनको सिर्फ एक बात बोलिएगा कि जिसने किया उससे जाके सीधे बात करो, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ. ऐसा मेरे पिता ने बोला. तो मेरी माँ कभी भी जाकर अगर मेरे पिता को बोली है कि आज बहू ने मुझे ऐसे बोला, तो बोले बहू ने तुमको बोला, आप जाइए और बात कीजिए, ये उन दोनों के बीच की बात है, इसमें तीसरे का कोई लेना देना नहीं होगा।
मतलब बात बात करने की, अगर बात आप नहीं करते तो रिश्ते उलझते जाते हैं, राइट?
आपको जिस बात को लेकर तकलीफ हुई है आप उसके पास जाइए और बोलिए कि मुझे आपकी बात अच्छी लगी, अगली बार नहीं होना चाहिए। आप बड़े हैं तो बोलिए अगली बार नहीं होना चाहिए, आप छोटे हैं तो बोलिए माँ ऐसे मत कीजिएगा, मेरे को ये बात ठेस पहुंचा रही। इंसान ही है, सब बुद्धिजीवी है, समझेंगे। जैसे एक माँ अपने हस्बैंड को और एक पत्नी अपने हस्बैंड को, मतलब इस परिवार के मेल्स, जिस भी परिवार के मेल्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फर्क डाइनिंग टेबल, वो किचन से निकल के ना पूरे घर में फैल जाता
है। काम पे सब्जेक्टिव है, आई थिंक।
नहीं,
कई बार ऐसा होता है कि आप माता को बोलते हैं और लड़की बोलती भी है, लेकिन माँ सुनने को तैयार नहीं होती। आप किसी से पूछिए जो इससे बीत चुका
है। किसकी माँ सुनने को तैयार नहीं
होती? लड़के की जो माँ होती है, अगर बहू बोलती भी है, वो मेक श्योर करती है कि वो सुने ही ना, तो वो क्या होता है उससे, और अपने जो उनके हस्बैंड होते हैं, वो ससुर जी बेसिकली, वो सुनना भी चाहेंगे तो उनको कहती है कि आप अनसुना कर दो, इग्नोर।
हाँ, ऐसे में तो ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसका इसका दूसरा रूपांतर भी है।
हाँ,
कि अगर गलत महिला घर आ गई है तो उस घर में सास की भी हालत खराब होती है।
बिल्कुल सही बात है, दोनों वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा,
एब्सोल्युटली।
तो देखिए ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई, इसलिए मैंने आपके इस सवाल का जवाब मेरे पिछले जवाब में कि जैसे ही लग रहा है कि यार शायद बिगड़ रही है बात, तो अलग अलग हो जाओ,
अलग अलग हो जाओ, बिल्कुल।
तीज त्योहार में मिलो, हंसो, बोलो। अगर एक को लग रहा है कि रोज मैं पैर ही छूती रहूंगी, मत छू भाई, जब मिलेगी तब छू लेना, हफ्ते में एक बार झुक सकती है तो झुक लेना। तो सबको थोड़ा 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 एडजस्ट करने की जरूरत है। प्यार बना रहे उसके लिए जो करना पड़े करना चाहिए।
लेकिन बताए क्या होता है, मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो और लड़कियों के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, कई बार तो देखो लड़कियां गलत आ जाती हैं, आई टोटली अग्री। कई बार क्या होता है, आप कभी लड़की की मानसिकता से सोचें, वो पूरा घर छोड़कर आती है ना, एक दिन में उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। उसको अपना घर छोड़ना होता है, अपनी फैमिली छोड़नी होती है, एक नई फैमिली में आती है, एंड पीपल आर जस्ट डिमांडिंग कि वो ये करेगी, वो ये समझे कि वो ये करेगी।
बिल्कुल गलत है
ना, कोई ये नहीं समझता कि उसे क्या चाहिए, वॉट हर मेंटल हेल्थ वुड बी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कोई समझता नहीं है। सब कुछ अपना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले जाना, लड़के के लिए सब कुछ सेम रहता है, या फिर आपको लगता है कि आपके हिसाब से लड़कों के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो?
नहीं, लड़कों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब वैसे ही रहता है,
वैसे ही रहता है,
बिल्कुल वैसे ही रहता है। और महिला को आके बहुत सारी चीज़ों के साथ ढलना पड़ता है, ये सच है। जब एक बहू आती है तो बहू को समझना पड़ता है कि फादर इन लॉ को फलानी चीज़ का टेस्ट कैसा चाहिए, जबकि वो आधे जीवन किसी अलग तरीके से बनाई है।
एग्जैक्टली।
कि देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। किसी और की माँ को माँ मान लेना, किसी और के
बहुत
को
बड़ी
पिता
बात
मान लेना, और आजीवन उनकी सेवा करना अपने माँ बाप समझ के, वहाँ पे माता पिता का दायित्व, उनका उनकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है कि उसको भी बिटिया समान रखे,
बिल्कुल।
है ना। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको बिटिया नहीं बिटिया समान रख सकती हूँ, तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा कि वो हमको माँ बाप नहीं, माँ बाप समान रखेगी। अगर आप उसको बिटिया बना लेंगे तो शायद आप उसके माँ बाप हो जाएंगे।
करेक्ट।
तो देखिए, एक एक ना इक्वालिटी का एक कीड़ा चल रहा है पूरे देश में, ऐसे ऐसे चल रहा है, चल रहा है, है ना। कि हर वो काम जो तुम कर सकते हो,
मैं भी कर सकती हूँ। हाँ,
है ना, एक महिला हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। नहीं साहब, आपको आपका सृजन इसलिए नहीं हुआ था, आपको इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप हर वो काम कर सकते हैं या करें जो मैं कर सकता हूँ। आपको इसलिए बनाया गया था कि आप वो भी कर सकती हैं जो मैं नहीं कर सकता। आप बार बार अपने आप को ढाल सकती हैं, वो आपकी प्रवृत्ति है। हम जड़ बुद्धि होते हैं, हम पेड़ जैसे होते हैं, ज्यादा जोर से धक्का मारोगे गिर जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे।
करेक्ट।
आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आपका काम है। आप अगर आप माँ नहीं भी बनेंगी ना, तो आप में वो क्षमता है। आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर मेरी जिम्मेदारी, तो मेरे में क्षमता नहीं। क्षमता सिर्फ एक महिला में है, कि एक बुजुर्ग होते हुए दंपति को बच्चों जैसे पाल सके।
राइट,
क्योंकि माता पिता जैसे जैसे उम्र दराज होते हैं वो बच्चे हो जाते हैं बुद्धि से। एक बार में बातें समझ में नहीं आना, किसी भी बात पे ज्यादा उखड़ जाना, गुस्सा आ जाना, भूल जाना, क्या बताए थे बेटा फिर से बताओ, उनको हैंडल करने के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल,
वो पेशेंस आप ही लोगों में होता है, भगवान ने बनाया है आपको, वैसे मुझे नहीं बनाया है।
लेकिन अक्सर ऐसा होता है अक्षत जी, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, हमेशा फैमिली में आप कभी भी देखिएगा जो फादर इन लॉ होते हैं ना, उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है बहू के लिए।
बिल्कुल,
वेरस जो मदर इन लॉ होती है बींग अ लेडी हरसेल्फ और वो उससे गुजर चुकी होती है, फिर भी वो ही होती है जो लड़की को तकलीफ देती है, या लड़की ही होती है जो मदर इन लॉ को तकलीफ देती है, इस वाइस वर्सा, मतलब दोनों एक दूसरे को, बीइंग अ वुमन, जहां हम बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट की, हम वुमन को ही नीचे गिराने में लगे रहते हैं।
ऐसा होता है क्योंकि उन दोनों का वक्त एक छत के नीचे सबसे ज्यादा बीतता है।
अच्छा,
और कोई लेना देना नहीं, कोई कोई महिला, कोई माँ ना कोई आने वाली बहू ये सोच के नहीं आती कि जाके ना नर्क बना दूंगी उसका।
एब्सोल्युटली,
ना कोई बुजुर्ग महिला ये सोचती है कि अब ये जो आ रही है ना इसका मैं जीना हराम कर दूंगी, ऐसा नहीं होता।
पर आजकल तो लड़कियां जॉब करती हैं।
हाँ, करती हैं,
फिर भी लड़ाइयां होती हैं,
क्योंकि सोच में बहुत फर्क है ना। आप जनरेशन गैप हमेशा रहा है, उनकी उम्मीदें कुछ हैं, आप कुछ चीजें करना चाह रही हैं, कुछ चीजें नहीं करना चाह रही। कई बार जब हम कुछ बोलते होते हैं ना तो हमको अपना चेहरा, अपना एक्सप्रेशन, अपना टोन नहीं सुनाई पड़ता सामने वाले को, तो उन चीजों का बैलेंस होना चाहिए। आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे परिवार के अंदर तो भी गलत है, आप पूरा ही समर्पित हो जाएं और परिवार के अलावा खुद पे ध्यान नहीं दें तो भी गलत है ना। तो वो जितनी बार कोई भी महिला बोलती है कि दिस इज अ वेरी थैंकलेस जॉब, सो नोबडी हैज आस्क्ड यू टू नॉट डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ एंड इन योर लाइफ, है ना। मेक टाइम, टाइम निकलता है ना, डिसिप्लिन से टाइम निकलता है। और तो वही कुल मिला के बॉटम लाइन, इसको मैं जितने भी अलग अलग तरीके से बोलूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे सारे श्रोता समझदार हैं, मुझे सुनने वाले ठीक ठाक समझदार है। बहुत ज्यादा दूरी होती है तो धागा टूट जाता है, किसी को बहुत ज्यादा खींच दे
रबिन को खींच मिल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन आप चलिए आपने रबर बोला, मैं उसी पे आपको उदाहरण देता हूँ, रबर को बहुत ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा,
टूट जाएगी,
लेकिन आप रबर को ऐसे करके रख देंगे ना तो आपस में
सिमट जाएगी,
नहीं ऐसा हो खराब हो जाता,
खराब हो जाती है ना। हाँ, गलना शुरू हो जाती है। राइट,
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा मिठास होगी तो भी चींटियां लग जाएंगी, ज्यादा दूरी होगी तो भी तलखी आ जाएगी। वो बैलेंस होना चाहिए खट्टे मीठे का, कि कभी बिना कारण के
नमक मिर्च बराबर होना चाहिए।
आप ठीक तो है ना?
हाँ, राइट,
कुछ चाहिए तो नहीं,
बिल्कुल,
आप खाली हैं तो मैं आ जाऊं क्या? जरूरी नहीं ना कि अगर एक बहू को का मन बैठ रहा है तो वो अपनी माँ को ही फोन करे, वो भी तो कभी अपने सास को फोन करके बोल सकते,
बिल्कुल
कि मम्मा मन बैठा है आपके पास आ जाओ क्या। तो इट इज अ टू वे,
एब्सोल्युटली, सास को भी उसमें वेलकमिंग होना चाहिए, फिर दोनों तरफ से होना चाहिए। एक बहुत ही मजेदार मुद्दे के बारे में बात करते हैं, डाउरी। आजकल आपको पता है दूल्हे जो है बिकते हैं, लिटरली बिकते हैं, मतलब आईएएस का रेट अलग होता है, आईपीएस का अलग होता है, डॉक्टर का अलग, इंजीनियर का अलग। तो दहेज और सीजन, क्या फर्क है इन दोनों में?
मुझे इस विषय में जेन्युइनली कुछ नहीं पता है।
अच्छा,
क्योंकि मेरे, जैसा मैंने बताया, मेरे माता पिता लव मैरिड थे, एक जोड़ी कपड़े में मेरी माँ आई थी।
हाँ जी,
मेरी दोनों ही शादियां लव मैरिज हुई हैं। मेरी पहली शादी में भी एज सच कोई डाउरी जैसा कुछ नहीं था, लेन देन थोड़ा बहुत हर शादी में होता है और वो बहुत नॉर्मल है कि भाई वही बच्ची जहाँ जा रही है वहाँ पे, हम अगर नया घर बनाए तो उसके कमरे का पूरा इंटीरियर करा दिया,
बहुत कॉमन है,
ये सब जगह होता है। और मेरी दूसरी शादी भी मेरी समकक्ष के माता पिता, माता तो नहीं बोलूंगा पर परिवार और पिता के खिलाफ हुई थी, और मेरे पास कुछ था नहीं, वो बिना शादी के, वो मैंने आपको बताया 57-58 लाख रुपए खर्च हो चुका। तो हमारी शादी बड़ी कमाल की हुई थी, 7:30 बजे शुरू हुई थी, 10:30 बजे ख़त्म हो गई थी। हम बैठे हुए थे मंडप पे और लोग आ रहे थे खाना खाने, और हम बैठे बैठे मंडप से हाथ हिला रहे थे। मेरी समकक्ष ने 2 साड़ियाँ पहनी थी, वो एक होता है ना कि पीले और लाल का मिक्सचर, ऑरेंज टाइप की साड़ी पहननी पड़ती है मंडप में।
अच्छा, हमारे यहाँ नहीं,
हमारे यहाँ है ऐसा कि लाल और पीला दोनों रंग होना चाहिए, तो एक अलग तरीके की साड़ी आती है जो ऊपर से लाल या ऊपर से पीली आ रही, नीचे से लाल आ रही, बीच में मर्ज हो रही।
ओके,
हाँ, तो वो उनकी मम्मी और मेरी माँ दोनों के पास था नहीं, तो वो एक साड़ी खरीदी थी। मैंने अपनी दूसरी शादी में अपनी पहली शादी के दोनों ड्रेसेस फिर से पहने थे, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो मैंने मंडप में पिछले शादी में जो मंडप में कपड़ा पहना था वही पहना था, और पिछली शादी में जो रिसेप्शन में कुर्ता वह पहना था वही पहना था। और 850 रुपये का बाटा का चप्पल मेरी समकक्ष ने मेरे को, मतलब उन्हीं के पैसे से मैंने खरीदा था, और उन्होंने अपनी पूरी शादी में खुद के ऊपर 5,500 रुपये खर्च किया था। और हमारी शादी हुई 2018 में, हमारे पास इतने कम पैसे थे,
सस्टेनेबल मैरिज,
हमारे पास इतने कम पैसे थे कि हम वीडियोग्राफर नहीं बुला पाए। आप सोचिए, मैं अब हर दिन कैमरे के सामने होता हूँ, मेरी और उनकी शादी का वीडियोग्राफी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे वीडियोग्राफर को देने। तो हमारे कुछ तस्वीरें हैं शादी की, तो ऐसे घर में और ऐसे लोगों के बीच में डाउरी और किसका क्या रेट, मतलब मेरा क्या ही रेट लगाएगा कोई।
नहीं, ये आपके लिए नहीं था बेसिकली, ये बहुत सी जगहों में, अगर मैं जानती हूँ बिहार है,
नहीं मैं समझ गया,
हर जगह पे मुझे एक्चुअली बिकते हैं लिटरली,
आई एम श्योर,
आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर,
पिक्चर में मैंने 2-3 बार इस तरीके की चीजें देखी है, लेकिन असल जीवन में अभी क्या रेट चल रहा है दूल्हों का हो, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं,
सनातन के हिसाब से स्त्री धन और दहेज में क्या अंतर है?
महिला शादी करके जिस घर में आती है वो पूरा घर ही उसका स्त्री धन हो जाता है। वो माँ बाप, उसके पति, उसके देवर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, वो पूरा ही उसका स्त्री धन।
अच्छा, हमारे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, एज पर शास्त्र स्त्री धन बोलते थे क्योंकि स्त्री का जो धन होता था उसकी सिक्योरिटी होती थी कि बेटा तेरे लिए पैसे हैं,
तो ये पूरा परिवार ही तो है उसकी सिक्योरिटी।
हाँ, राइट। लेकिन आजकल उसको टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया गया, जैसे आप बोलते हैं हमेशा कि हमारे कैसे कैसे चीजों को चेंज कर दिया गया, हर चीज को, अभी जैसे आपने बोला कास्ट वगैरह सब एक हो जाओ, हम सब एक ही हैं, तो वो सब चेंज कर दिया गया, उसको नाम दे दिया गया दहेज, फॉर देयर ओन गुड बेनिफिट्स।
जिसे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश आज से कई हजार साल पहले मैट्रियार्की सोसाइटी था,
बिल्कुल था,
आपके इस देश में स्वयं वर होता था, स्वयं वधु कभी नहीं हुआ, मतलब मीका के पहले तो नहीं हुआ, उसके पहले सिर्फ स्वयंवर होता था।
हाँ।
आप महिलाओं के पास ये शक्ति थी ये चुनने की कि आपको अपना जीवन किसके साथ बिताना है।
बिल्कुल सही बात है।
राम भी स्वयंवर में गए थे, अर्जुन भी स्वयंवर गए थे, पांडव भी स्वयंवर गए,
बिल्कुल।
तो स्वयंवर, आप समझ रहे हैं, आपकी आपकी शक्ति का एहसास हो रहा है आपको कि मैं तय करूंगी
किसे आप मुझे माला पहनानी, और माला
इतनी शक्ति है कि मेरा एक भी भगवान आपकी परमिशन के बिना पृथ्वी में नहीं आ सकता है। समझिए आप इस बात को, राम और कृष्ण नहीं आ सकते पृथ्वी में आपकी परमिशन के बिना। विद द चेंजिंग टाइम गड़बड़ ये हुई है कि देखिए किसी भी एम्पायर के अंदर किसी के आने का निर्णय दो लोग लेते हैं,
राइट,
एक तो जो वो सिंहासन पे बैठी है या बैठा है, और एक जो दरवाजे पे खड़ी है या खड़ा है। आप लोग रानियां हैं, आप लोग शहनशाह हैं, आप लोग क्वीन हैं, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स की वजह से आपको दरबान समझ लिया गया है, इसीलिए औरत जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है कि दैट इज द डोर, लेट कम इन, है ना। तो आप तय करती हैं, आप निर्णय करती हैं कि इस पृथ्वी में कौन आएगा और कौन नहीं।
बिल्कुल,
मेरा एक भी भगवान नहीं है जो अवतार लेके यहाँ आए और आपकी अनुमति के बिना आ जाए।
रचने वाली जगत जननी है,
वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एटम बनता है। मैं बोलता हूँ ब्रह्मा विष्णु और महेश मिलके शक्ति बनती,
बिल्कुल,
है ना, और ये डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर और क्रिएटर मिलके पृथ्वी बनती,
पृथ्वी बनती है।
पृथ्वी जो है वो फीमेल है, शक्ति जो है वो
फीमेल है,
और एटम आई एम श्योर फीमेल ही होता है। ऐसा
बिल्कुल मानने का तरीका है, नहीं तो लोगों ने तो बिल्कुल ही फूड मेन्यू जैसा विद प्राइस लगा दिया है अपने लड़कों को कि इतना दोगे तो। हम, मेरे पास एक काम करती हैं महिला, उनकी बेटी की शादी के लिए बेचारी वो दे रही हैं करीबन 8 लाख रुपए। सोचिए क्या तनख्वाह होगी बेचारी की और कैसे देंगी वो।
तो आप,
इट इज सो डिफिकल्ट।
कब है उनकी शादी?
शादी अप्रैल में।
अप्रैल में आप डेट वेट पूछ लिए, आपको तो न्योता आएगा ही शादी का, पुलिस लेके पहुंचेगा, बहुत मजा। फिर वहां से अपन 16 लाख रुपए वापस लेके,
हाँ,
फिर किसी लड़के को ढूंढ के उसको 8 लाख रुपए देंगे इनसे लेके।
हाँ,
सॉर्ट,
सबसे बढ़िया,
और
ऐसे ही करना चाहिए आई थिंक।
हम बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि हम समाज में बदलाव लाना चाह रहे हैं ना।
बिल्कुल बिल्कुल,
आप कर सकते हैं, करिए,
बिल्कुल सही बात,
आई
वुड लव टू।
हाँ, आप वो आपके घर की जो हाउस हेल्प है उनको अभी बस इतना बोलिएगा कि मैं अपने साथ, तुमने मेरे परिवार को दिया, मैं अपने साथ दो तीन और गेस्ट लाना चाहती हूँ, ले हूँ, चले गए। ऐसे भी 8 लाख खर्च करिए, 1000-2000 और से
खुद
बोलेगी हाँ ले आइए, ले जाइए।
और आईएएस की कीमत तो करोड़ों में चल रही है आजकल, उनकी तो और भी आज
आईएएस को ले जाइएगा, वो हाँ। वो करोड़ों वहां से निपटाए।
नो इन्वेस्टमेंट ओनली रिटर्न्स, सबसे बढ़िया काम है आज,
ले जाइए करवाइए। बोलिए कि चिंता मत करो, इस बच्ची की शादी हम देख लेंगे बिना ये सब। भाई अगर हम समाज में कुछ बदलना चाह रहे हैं तो फिर सिर्फ बतियाने से नहीं होगा,
करना भी पड़ेगा।
जब आपको मालूम है कि वो 8 लाख रुपए दे रही है तो आप देखिए कि कैसे ना दे, वो बनिए
तो करना पड़ेगा।
बनिए विलन।
ये तो पूरी मानसिकता जो चेंज करनी पड़ेगी, अकेले एक इंसान से कुछ भी नहीं होगा, यू हैव टू चेंज द होल सिस्टम।
नहीं तो वो होल सिस्टम में आप तो एक ही इंसान है आप। हाँ। तो हम जो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आप मेरे घर आइए, मेरा मेरा जो छोटा भाई है उसका बेटा है 3 साल, तोतला के बात करता है, उससे अगर आप पूछेंगे बेटा अपना पूरा नाम बताओ तो वो बोलेगा अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता तोतलाते। उस बच्चे को ये मालूम ही नहीं है कि उसका नाम सिर्फ अगस्त्य गुप्ता, उसको लगता है उसका पूरा नाम है ही अनंता पुत्र अगस्त्य। मैं अपने घर से चेंज कर रहा हूँ,
बहुत बढ़िया,
तो
कहीं तो शुरुआत
हो। हाँ, कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, यही बोल बोल के तो 140 करोड़ लोग पिछड़ गए।
हाँ, बिल्कुल सही बात है,
एक एक करके करते हैं ना, करिए आपने।
इसीलिए ये प्रोग्राम
है, मेरे को दीजिए एड्रेस, मैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, सब जगह के, मेरे पुलिस में भी थोड़े दोस्त हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल होंगे,
कुछ नेता भी मेरे परिचित के हैं, तो फिर मैं आता हूँ उनकी शादी कि आओ मित्र,
काफी सारे हैं, आपको बताऊंगी फिर।
चलिए
विल टॉक अबाउट दिस,
चलिए सब जगह चलेंगे खाना,
बिल्कुल।
और ये कांड करने के बाद भी वहाँ खाना खा गया,
खाना खा कर आएंगे, क्योंकि खाना तो स्पेशलिटी होता है हर जगह की,
वहाँ भूख लग जाएगी ना, यहाँ तो मेहनत करके पहुंचेंगे हम लोग, तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोले भाई साहब दूल्हे राजा आप पहुंचिए थाने, हम खाना
हाँ, हम खाना खा कर आते हैं,
तो करेंगे तो होगा।
वेरी गुड,
वो एक कहावत है ना, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड।
एग्जैक्टली,
तो यहाँ हम वेल सेड कर रहे हैं, कोई वेल डन भी करे तो मजा आए।
आई थिंक तभी मजा आएगा। एक जगह एक्चुअली मेघालय, अगर आप जानते हैं, वहां पे तो उल्टा सिस्टम होता है, वहां पे लड़कियां जो हैं लड़के को अपने घर लेके जाती हैं,
खासी समुदाय बोलते हैं,
खासी समुदाय, हाँ,
और कमाल का सिस्टम है वहाँ, पूरी प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब महिलाओं के ही
हाथ में रहती है नाम पे।
तो आप, मैं, मुझे तो बार बार ऐसा लगता है कि अगर मैट्रियार्की सोसाइटी होती तो रामायण और महाभारत कुछ नहीं होता, बड़े आराम से बोल दिया जाता है कि कलेश सब आप लोग की वजह से होता है ना घरों में भी, और देखो महाभारत हुआ तो द्रौपदी की वजह, रामायण तो सीता,
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर आपके हाथ में होता ना तो आप लोग आपस में सुलझा लेते, आप लोगों को जीवन की कद्र पुरुषों से ज्यादा है, आप नहीं होने देते महाभारत, आप दे देते 5 गांव कि रखो यार,
एब्सोल्युटली, क्या रखा है,
5 गांव रखो, ये मेरी अंगूठी और बिछिया भी लेके जाओ।
बिल्कुल सही बात है।
तो पुरुष, ये महिलाओं की वजह से कांड और कलेश नहीं होता है, महिलाओं के हाथ में सब दे दीजिए, ये देश ज्यादा सुखी और ज्यादा शांत हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है जो भी ये बोलता है कि महिलाओं को ये करना है और ये नहीं करना है, आप लोग हमसे हर चीज बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग को लेबर क्लास बनाया था भगवान, सच्ची में। मैं कहीं और भी बोला था, लोग हंसे भी लेकिन उनको मजा भी आया। आप देखिए, युद्ध में जाना है तो पुरुष जाएगा,
पुत्र जाएगा,
हथियार उठाना है पुरुष उठाएगा, पूरा पहाड़ उठाना है हनुमान जी या कृष्ण जी, पुरुष उठाएगा, है ना, बर्फ में नंगे बदन हिमालय में जाके बैठे रहना
महादेव
पुरुष करेंगे, है ना। महिलाओं को कैसे कामों में डाले हैं, सरस्वती, बुद्धि आपके पास है, मेरे पास सिर्फ शक्ति शारीरिक, लक्ष्मी, पैसा कमाने का कौशल, पैसा लाने का कौशल आपके पास है,
संभालने का,
अन्नपूर्णा, मेरे शरीर में शक्ति रहे उस वो शक्ति देने वाली फिर आप हैं,
बिल्कुल,
भोजन बनाने, भोजन लाने की क्षमता आपके पास, तो आपको सारा सारा क्रीम क्लास काम देगा, हम लोग लेबर क्लास लोग,
ये मैं याद रखूंगी आपसे,
सबको रखना चाहिए,
बिल्कुल रखना चाहिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर में बैठेंगे तुम बाहर जाओ काम।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
बाहर सारा लेबर क्लास तुम करो, घर इसीलिए बोला जाता है कि ला के पैसा हाथ में इनके, ये लक्ष्मी ये संभाल लेगी, बच्चों को पढ़ाना हर घर में किसका काम,
महिला,
सरस्वती कौन है,
महिला,
खाना बनाना खिलाना किसका काम,
महिला का,
अन्नपूर्णा कौन है,
महिला,
बस यही, हम लोग लेबर क्लास लोग हैं, हमको लेबर क्लास काम करने, बाकी पूरा विश्व, पूरा धरती, पूरा देश, पूरा शहर आप संभालो।
वेरी वेरी वेल सेड, मस्ट अप्रिशिएट। अच्छा आजकल सोशल मीडिया जो है
उसकी... अच्छा मुझे लगा इलाज था।
अच्छा नहीं बस हो गया। आजकल जो सोशल मीडिया रिलेशनशिप पे कितना इम्पैक्ट डाल रही है आपके हिसाब से?
बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, कंपैरिजन बढ़ गया है। कोई अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे रोता हुआ चेहरा थोड़ी ना डालेगा, भले वो घर में कितना भी रो रहा। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं अपने बच्चे की याद में, कई बार अभी मैं वर्ल्ड बुक फेयर में आया, रोज बच्चों से मिलता हूँ, उनको हंसाता हूँ, उनको चॉकलेट देता हूँ, उनके साथ हंसता हूँ, फिर रात को इसी कमरे में अकेले आता हूँ, मेरे को क्योंकि मैं बच्चों से मिल के आया होता हूँ, किसी की थोड़ी थोड़ी मुँह छूक रही है, किसी की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ रही है, कुछ 16 साल का है, कुछ 17 साल का है, मेरे को मैं बार बार उनको देख के तो मेरा बच्चा कैसा दिखता हो, उसकी आवाज़ अब कैसी होगी। तो उस समय सबकॉन्शियसली चलता रहता है, होटल के कमरे में अकेले आता हूँ, वो बिल्कुल सामने आ जाता है सब कुछ, मैं रोता हूँ, लेकिन मैं रोता हुआ फोटो या वीडियो इंस्टाग्राम पे थोड़ी ना डालूंगा।
एग्जैक्टली
तो लोगों को लगता है कि जलवे हैं इसके, अरे हमारे भी अपने दुख हैं, हम भी रोते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो होता क्या है कि सब लोग अपना अपने खुशी के पल को बार बार डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि है नहीं तो आप कैसे दिखाते, जब आपके कोई घर आता तब दिखाते, नहीं देखो फोटो मैं पेरिस गई थी, मैं लंदन गई थी,
राइट।
अब वो एक ट्रेंड बन गया,
स्टेटस सिंबल,
ये ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, वैसे खड़े, क्यों फोटो इसलिए नहीं खिंचा रहे लोग अब कि यादगार रही, फोटो इसलिए खिंचा रहे क्योंकि डालना है।
एग्जैक्टली।
तो बाकी लोग देखते हैं तो कंपैरिजन होता है, फिर वो ऐसी चीजें होती कि यार देखो वो दोनों कितने खुश हैं, क्योंकि आप अपना जीवन असलियत में देख रहे हैं, दूसरे का जीवन फेक देख रहे हैं, लेकिन आप अपने असली जीवन को उसके फेक जीवन से कंपेयर
करने लग जाते हैं।
वो खुश है मैं नहीं,
खुद को तो ये खुशी का बहुत बड़ा कारण भी बन चुका है ये,
बिल्कुल है,
बिकॉज कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया है,
100% हो रहा है। तो इस तरीके सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल एंड एक्सट्रीम्स बोथ इन गुड एंड बैड।
एग्जैक्टली। नॉलेज बहुत बढ़ गई है,
सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया, बैलेंस है ही नहीं, जो अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस की,
हाँ
वो बहुत ज्यादा हिला हुआ है, या तो एक्सट्रीम्स में नेगेटिविटी है, एक्सट्रीम्स में पॉजिटिविटी,
सास बहू बन चुका है बेसिकली,
गड़बड़े मामला।
राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और।
अच्छा मुझे लगा
बस एक लास्ट क्वेश्चन।
ये सब मत काटिएगा, जाने दीजिएगा, लोगों को मजा आता है।
आजकल की जो जनरेशन है शादी करती है एक दिन के लिए, मतलब या तो वो बहुत ज्यादा, मतलब देयर इज फोकस ऑन अ बिग फैट इंडियन वेडिंग डे बोलो, या फिर डेज बोलो, या फिर महीने बोलो, मतलब फोकस होती हैं उस पर, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालनी होती है उनको इसके बारे में। आपके
तरह पूरा पूरा वेडिंग बेचे हैं।
रियली?
हाँ ओटीटीज को और पता नहीं कहाँ का, एवरी फोटो वाज सोल्ड कि बाहर नहीं जाएगी फोटो, और जब जाएगी तो
कमाई होगी
भयंकर,
मतलब इसी के लिए वो शादी, फिर थोड़े टाइम के बाद वो शादी सुनते हैं कि हो गया डन।
देखिए वो तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप पहले अच्छे समझ तो लीजिए, आप किसी प्यार तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जीवन उस व्यक्ति के साथ बिता सकते हैं कि नहीं?
Exactly.
प्यार, love with time fades away.
Understanding is the key of happiness.
आप क्या दोनों जन उतने मच्योर हैं कि जीवन भर आप साथ रह पाएंगे, कि अभी बस नया नया प्रेम परवान चढ़ा है, चलो
चलो भाग चले पूरब की ओर,
बस अब वादियों में रहेंगे, खाना कहाँ से खाओगे वादियों में, जब ठंड पड़ेगी तो क्या करोगे,
तो क्या करोगे?
जिसको उसकी समझ आ जाती है उसकी शादी चल जाती है,
नहीं तो दे मूव क्विकली टू द रिवर्स।
हाँ हमारी तो पहले नहीं चली,
लेकिन आपने क्विकली तो नहीं किया ना, आप छोटे थे, मतलब आपको समझ नहीं थी, जैसे आप बोलते ही हैं।
मैं छोटा था, मेरे को समझ नहीं थी, और मैंने शादी कर ली, वो भी पर मेरी गलती होगी।
हाँ बिल्कुल, मतलब उस टाइम पता नहीं होता इंसान कुछ भी, यू नो दैट टाइम यू आर वेरी यंग टू टेक डिसीजंस, आप एकदम से ले लेते हैं, और वो कभी गलत हो जाता है और कभी सही भी लग जाता है। तो चलिए वो तो खैर, बट अभी आप खुश हैं वो मैटर करता है, दैट्स व्हाट मैटर्स
बहुत ज्यादा। और ये मैं कैमरे के लिए नहीं कह रहा हूँ,
हाँ।
मैं आपको इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को याद करके रोता हूँ, तो मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश और बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन, अपने कामों से, अपने सक्सेस से, अपने आसपास के लोगों से, अपनी समकक्ष से, बहुत प्रेम मिलता है, बहुत कमाल की समझ है उनको मेरे प्रति, भाई उन्होंने थोड़ी ना कहा पैर छुओ, मेरे जहन में कुछ आया होगा ना,
बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैं पहले किसी का पांव अगर नहीं छुआ, तो अगर आज मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ इस बात का कि मैं उनका पैर छू रहा हूँ, तो मैं डेबिट भी दूंगा जिसका मैंने पांव नहीं छुआ। आप उस लायक होती तो मैं आपका पांव छू लेता।
ये सब दैविक अनुभूति होती है, आई टोटली बिलीव।
मुझे लगा कि ये उस लायक है तो मैं उनका पांव छूता हूँ।
वंडरफुल, एक्चुअली इट वाज एक्चुअली अमेजिंग मीटिंग यू, लवली, अमेजिंग। क्या क्या शब्द बोल पाऊँ वो भी कम पड़ेंगे शायद, और जो सिखाया।
मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए आप आराम से बैठ के यहाँ पे तैयारी करके कैमरे पे बोल सकती हैं, है ना?
हाँ, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं।
हाँ, मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए हमेशा तत्पर।
हाँ, बिल्कुल।
कोई है सर जिसको अपनी तारीफ अच्छी ना लगे?
वैसा वर्षा,
वैसा वर्षा। आप बेहद खूबसूरत हैं, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, आपके सवाल अच्छे थे, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और आपने मुझे जो तोहफा दिया ना, वो मुझे कैमरे पे दिखाने का मन है, अगर आप अलाउ हो।
हाँ।
तो इनका एक ब्रांड है जिसका नाम 108 है, और मुझे ये बेहद खूबसूरत सैचल मिला है। ये सिल्क है और ये प्लांट लेदर है, किसी का जान नहीं लिया गया, ये प्लांट लेदर है। ये नई चीज़ है मेरे लिए, मुझे नहीं मालूम था प्लांट लेदर कुछ है, बट ये एक नॉन वायलेंट सैचल है जिसके अंदर मैं कोई भी वायलेंट चीज़ रख सकता हूँ, इट्स ओके, है ना? तो ये बेहद सुंदर है, ये देखिए पीछे से भी, और यहाँ से ऐसे खुलता है, और मैं इसको डेफिनेटली यूज़ करने वाला हूँ। ब्रांड का नाम मत भूलिएगा, 108, पर इन्होंने सिर्फ मुझे नहीं दिया है, इन्होंने मेरे साथ साथ बुलबुल के लिए भी कुछ दिया है, और ये भी बहुत ही प्यारा सुंदर सा बैग है। ये ऐसा बैग है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे कम समझ है लेडीज़ पर्सेस की, पर हाँ ये सुंदर है। इन्होंने मुझे बताया था मेकअप का अलग एक स्पेस है, लैपटॉप का अलग एक स्पेस है, एक चक्कू रख सकते हैं जब चाहे मुझे मारने के लिए, उसका भी एक अलग स्पेस है। तो उन्होंने हर चीज के लिए स्पेस बना के रखा है, छड़ी भी ऐसे मोड़ के रख सकते हैं इसके
फोल्डिंग वाली।
हाँ, जब चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों प्यारे तोहफों के लिए, जेन्युइनली बहुत सुंदर लगा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब,
थैंक यू सो मच।
तो जाइए ढूंढिए, 108 टोटल 9 है, तो 108 करके इनका ब्रांड है, और प्लीज डेफिनेटली ढूंढिए। अगली बार जब अगर हम बात करेंगे ना कैमरे पे, तो हम 108 और 9 के आसपास बात करेंगे, बड़ा कमाल का जादुई नंबर है 9।
पक्का,
चलिए,
मुझे बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि फिर मेरा बर्थ डेट का उसमें मुझे आंसर मिल जाएगा ना।
हाँ, कर लेंगे। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट था नमक मिर्च, आपका होस्ट अक्षत गुप्ता, सवाल पूछ रहा था
आपकी दोस्त दीपाली रेखी,
दीपाली रेखी
जो आंसर सुन रही थी।
और अगर आप इनको आगे भी ऐसी सुनते रहना चाहते हैं, तो इनके मेरे इस पॉडकास्ट को क्या क्या बोलते हैं वो, सब्सक्राइब करें,
फॉलो करें,
बेल का बटन दबाएं और फॉलो करें,
और लाइक करें,
और लाइक करें और कमेंट करें। तो इनका साथ दीजिए, इस तरीके की पारिवारिक बातें होना ज़रूरी है हम सबके परिवारों में और हम लोगों के बीच में। बाकी हिंदुत्व पे और देश पे तो मैं यूं भी बतियाता रहता हूँ, दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट,
थैंक यू सो मच,
जहाँ पे वो सवाल एक भी नहीं था जो मैं थक जा रहा हूँ जवाब दे देके, पर ठीक है, जो सवाल आएगा उसका जो जवाब होगा वही तो देंगे।
एब्सोल्युटली।
तो सवाल बार बार रिपीटेड आते हैं, तो जवाब भी हम रिपीटेड देते हैं, पर ये करने में मज़ा आया। लेकिन इस तरीके की बातें अगर आप इनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप यंग हैं तो फिर उसमें से क्लिप्स काट काट के आप अपनी सास को भेज सकती हैं, और अगर आप सास हैं तो क्लिप्स काट 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 के आप अपनी बहू को भेज सकती हैं, आप क्लिप्स काट काट करके अपने हस्बैंड को भेज सकती हैं, और हस्बैंड्स भी कईयों को भेज सकते हैं। परिवार और स्ट्रांग होगा, संगठित होगा, समझ में आया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपका होस्ट अक्षत गुप्ता और आपकी दोस्त दीपाली आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।
धन्यवाद।